जय जय श्री राधे श्याम, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना रावणचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राधे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम 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 हरे हरे। कीर्तन की श्री श्री राधा गिरिधारी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। ग्रंथ राज श्रीमद भागवत महापुराण की। राधाष्टमी आविर्भाव तिथि की जय। श्री राधा रानी की। ब्रजभानु बाबा की जय। श्री कीर्तिदा मैया की जय। श्री बरसाना धाम की। श्री रावल धाम की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासम् ततो जये मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भव नैष्ठिकीम्। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखाम्बितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु वचः तदिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतेर्गतिः मत्सर्वस्व पदां भोज श्रीराधा मदन मोहन दिव्यं वृंदारण्यं कल्पद्रुमाद्य श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रसालिधि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारम्भि वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीयेस्तु नः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण तो श्री राधा अष्टमी के पावन पर्व पर मंदिरांगन उपस्थित कृष्ण कथा प्रेमी वैष्णव एवं भक्तिमती वैष्णवी मातृशक्ति हार्दिक उनका हार्दिक स्वागत के साथ धन्यवाद। श्री राधा रानी का ये जन्म उत्सव सभी लोकों में सभी देवता मनाते हैं, वैष्णव मनाते हैं। देवताओं की क्या कहे, साक्षात सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर योगेश्वर जिसको कहा जाता है वे नंद नंदन भी मनाते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही प्रसिद्ध है वैष्णव जगत में पूरे भारत वर्ष में, लेकिन उससे भी बड़ा उत्सव वैष्णवों के लिए है राधाष्टमी, क्योंकि कृष्ण अपने बर्थडे पर अपने जन्मदिन पर उतने प्रसन्न नहीं रहते जितने अपनी प्रिया के जन्मदिन पर होते, और ये नेचुरल स्वाभाविक है। तो आज थोड़ा ज़्यादा सजे है हमारे गिरिधर, क्योंकि वो फॉर्म में है पूरा, क्योंकि आज उसके लिए स्पेशल डे क्योंकि अपने से ज़्यादा जिसको हम प्रेम करते हैं या जो हमें प्रेम करता है उनके जन्मोत्सव पर अधिक आनंद व्यतिरेक होता ही है। तो श्री राधा रानी के दिव्य तत्व लीला स्वभाव ऐश्वर्य माधुर्य का बड़ा बृहद और छुपा हुआ रहस्यमय वर्णन हमारे वैदिक शास्त्रों में प्राप्त होता है। ऐसे वैष्णव संप्रदायों में भी प्राय लोग राधा रानी की महिमा या राधा तत्व के विषय में नहीं जानते। बाहरी जगत की बात छोड़ दीजिए, चार प्रमुख वैष्णव संप्रदायों में भी ये छुपा हुआ है। ये तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की परम करुणा है कि गौड़ीय धारा में उनके आश्रित रूप सनातन आदि मंजरी और उनके आश्रित श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि इस्कान संस्था के माध्यम से आज पूरे विश्व में राधा जन्मोत्सव राधा अष्टमी मनाकर हम कृष्ण प्रेम भक्ति के पात्र बन सकते हैं। क्योंकि पूछा जाए कि कृष्ण प्रेम का जन्म स्थान कहाँ है, कृष्ण का जन्म स्थान आप बता दोगे मथुरा में गोकुल में उत्सव हुआ, लेकिन कृष्ण प्रेम का जन्म स्थान कहाँ है, तो उत्तर है श्री राधा चरण, श्री राधा कृपा। बिना श्री राधा की कृपा के कृष्ण प्रेम संपदा को प्राप्त करने में कोई समर्थ नहीं। तो कृष्ण प्रेम भक्ति का भंडार लेकर श्री राधा रानी आज के दिन भूतल पर श्री धाम वृंदावन ब्रज 84 कोस में, श्री धाम यमुना तट पर रावल में बाबा श्री विश्वभानु और कीर्तिदा जी के वात्सल्य रस को लूटने के लिए कृष्ण की आलादिनी शक्ति आज के दिन प्रकट हुई। और इस राधा नाम को कोई ले, तत्व सुने, लीला सुने, प्रणाम करे, दर्शन करे, वह सब राधा रानी की कृपा से कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ उत्सव है श्री राधा जन्माष्टमी। तो आप सभी वैष्णव इस पावन पवित्र मंगलमय कृष्ण प्रेम भक्ति वर्धक त्रिताप विनाशक जो जो उपमा दी जाए कम है इस राधा अष्टमी तिथि के विषय में, और ऐसी तिथि पर उसी राधा गिरधारी के चरणों में आप उन्हीं की कथा सुनने आए हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे हम तो कोई ज्ञानी भक्त प्रेमी कुछ भी नहीं है, लेकिन वैष्णव आज्ञा और वाणी को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत के कुछ शब्दों का आश्रय लेकर राधा तत्व, उसके बाद राधा जन्म और फिर राधा रानी और कृष्ण के मिलन विरह संयोग मान प्रणय जो भी समय रहा कुछ लीलाओं को कहेंगे। और हम आधार लेते हैं भागवत के, प्राण माना जाता है भागवत का प्राण पंच रास पंचाई अध्याय, और उसमें कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात में अंतर ध्यान हो जाते हैं यमुना तट पर, तो उनको ढूंढती है गोपियां यमुना के तट पर, कृष्ण अन्वेषण कृष्ण का खोज करती है। और उस समय यमुना की वो सुंदर बालू में योग माया आश्रित योग माया की कृपा से श्री यमुना जी का वो तट एकदम दिव्य चमक रहा है, मानो किसी पूर्णिमा के चांद को मिक्सर में पीस कर चूर्ण बनाकर बिखेर दिया हो। यमुना के तट पर बालू चंद्रमा की तरह चमक रही है, शीतल है और पूरा वातावरण रमणीय है, मनोहर है योग माया की व्यवस्था से। और कृष्ण प्रेमवती गोपियाँ श्री ललिता श्री विशाखा जी कृष्ण और राधा को खोज रहे हैं, खोजते खोजते उन्हें यमुना की बालू में चरण चिन्ह प्राप्त होते हैं, जिन चरणों में चक्र शंख कंगन ये सब दिव्य चिन्ह उपस्थित है। और इन चिन्हों को देखकर ललिता जी विशाखा जी सखिया जो ढूंढ रही है वो कहती है कि देखो देखो सखी, ये चरण उस गोपी के है जिसने कृष्ण की सेवा सबसे अधिक की है। अनया आराधितो नूनम भगवान हरीश्वरा, वे भगवान षडैश्वर्य पूर्ण हरि जो सभी पाप ताप दुख अमंगल हर के प्रेम देते हैं, और ईश्वर जो समस्त विश्व ब्रह्मांड प्रकृति के एकमात्र कंट्रोलर स्वामी नियंता है, वे श्री कृष्णचंद्र जो हमारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर के रूप में रास से अंतर ध्यान हो गए थे, जिस गोपी को लेकर जो उनकी स्पेशल है, उनकी प्रिया है, और जब से ज्यादा प्रेम सेवा उससे करती है, आराधना करने में जो पटु है, उस राधा रानी के यह चरण है। राधा नाम स्पष्ट उच्चारण नहीं है, लेकिन अनयाराधितो उसमें राधा नाम छुपा है। तो इस श्लोक का हम आधार लेते हैं, शुक जी के मुख से निकला है, राधा और कृष्ण के प्रेम लीला के संबंध का ये अमृतमय श्लोक। आप वैष्णव इसको ध्यान से सुनिए, आंखों से देखिए और प्रेम से बोलने का प्रयास कीजिए। भागवत 10वां स्कंद 30वां अध्याय 28 नंबर श्लोक। अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह। सभी प्रभु जी एक साथ बोलेंगे और माताएं पीछे सभी एक साथ आवृत्ति करेगी। आप बुलवा रहे हैं उन लोगों एक मिनट मिक्सर हो गया। अब प्रेम से सभी प्रभु जी एक लाइन बोलेंगे तो माताएं फिर बोलेंगे, फिर दूसरा जैसे हमने बुलाया ऐसे आप माताओं को बुला रहे हैं। ओके स्टार्ट। अनयाराधितो नूनम ओके माता है भगवान माता है सभी बोलेंगे अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह। यही है संकीर्तन, साथ में भागवत जिसमें भगवान के नाम है। देखो गोविंद भगवान हरि ये सब भगवान के नाम है, और विहाय ये उनकी लीला है। तो भगवान के नाम रूप लीला का सुखदेव जी ने जो कीर्तन किया है उसी को आवृत्ति करना, मतलब गाना सुनना, इसी को संकीर्तन कहते हैं, साथ में भक्तों के साथ। तो धन्यवाद। शब्दार्थ इस प्रकार है, हमारे पीछे बोलने का प्रयास करिए। अनया उसके द्वारा आराधित भलीभांति पूजित नूनम निश्चय ही भगवान श्री भगवान हरि कृष्ण ईश्वर परम नियंता इतना ही ना हमको विहाय त्याग कर गोविंद भगवान श्री गोविंद प्रीत प्रसन्न याम जिसको अनय ले गए रह एकांत स्थान में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा अनुवाद। इस विशेष गोपी ने अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह से पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सब को छोड़ दिया और इस गोपी को एकांत स्थान में ले आए। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आराधित शब्द श्रीमती राधारानी के लिए आया है। उनकी टीका है, सुखदेव गोस्वामी ने इसका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया, किंतु मुख रूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठा। उन्होंने राधा का नाम ले ही लिया। यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधित शब्द श्री राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदु घोष है। यद्यपि गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति देखने में ईर्ष्यालु लगती है, किंतु यह देखकर पुलकित है कि राधा ने कृष्ण को बंदी बना लिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी कृत श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों का विस्तृत वर्णन दिया है, इसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं। उनके दाएं पांव में, राइट पांव में चरण में अंगूठे के नीचे का चिन्ह है, वह है चक्र। चक्र के ठीक नीचे छत्र, छत्र के नीचे कंगन, और उसके पांव के बीच के एक खड़ी रेखा है, अंगूठे से तथा दूसरी अंगुली के बीच तक जाती है। बीच की अंगुली के नीचे कमल है और उसके नीचे ध्वजा है, और ध्वजा के नीचे लता है जिसमें फूल लगा है। उसके पांव की छिगुनी के नीचे अंकुश है और उनकी एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह इनके बाएं पांव में भी 11 चिन्ह हैं। जिनके दाहिने पांव में अंगूठे के नीचे शंख है, उसके नीचे भाला, उसके दाएं पांव की छिगुनी के नीचे यज्ञवेदी, उसके नीचे कुंडल, कुंडल के नीचे फिर भाला, तीसरी चौथी अंगुलियों के नीचे पर्वत और उसके नीचे रथ, और एड़ी में मछली का चिन्ह। इस तरह श्रीमती राधारानी के चरण तलवे में भी कृष्ण की तरह 19 विभिन्न चिन्ह है। राधा चरण कमल की विशेषता रूप गोस्वामी ने बताई है, उसी को चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं और उसी को प्रभुपाद जी के शिष्यों ने यहाँ तात्पर्य में दिया है। ओके, तो यहाँ पर इस श्लोक में राधा नाम छुपा है, ऐसा वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी ने पूरे श्रीमद् भागवत में कोई भी गोपी का नाम नहीं लिया, एक ही गोपी का नाम लिया, यशोदा लेभिरे गोपी। नवम अध्याय में दामोदर लीला में चाहे वात्सल्य रस की गोपियां हो, चाहे माधुर्य रस, ब्रज 84 कोष में अनंत कोटि गोपियां है अलग अलग भावावृत, लेकिन कोई गोपी का नामकरण भागवत में नहीं आया। एक ही गोपी का आया और वो है श्री यशोदा जी का। बाकी जो भी गोपियां हैं उनकी लीलाएं कृष्ण के साथ बताई गई, लेकिन नाम नहीं। जैसा कि आप सभी वैष्णव जानते हैं कि गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है श्री वृषभानु नंदिनी राधा। पूछा जाए कि कथा कहने वाले गंगा के तट पर वक्ता कौन है, तो बोले श्री व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी। अच्छा, वो सुखदेव गोस्वामी कौन है? तो वैष्णव आचार्य कहते हैं कि राधा कृष्ण सुयश सरोवर के राजहंस है। जैसे हंस होता है ना, सरोवर में केली करता है, विहार करता है, ऐसे राधा और कृष्ण का एक यश सरोवर हो, गुण सरोवर, और उसमें जिनकी रति मति गति हंस के समान विचरण करती है, तो सुखदेव जी क्या है? राधा कृष्ण सुयश सरोवर के राजहंस, उन्हीं की लीलाओं का गान करते हैं। और वे राधा रानी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आचार्य कहते हैं, जैसे यहां आपने सुना कि चक्रवर्ती जी ने कहा कि अंततः राधा रानी का नाम सुख जी ने ले लिया, और ये नाम ले लिया राधा रानी का, वो राधा रानी की इन पर कृपा है, ये लिख रहे हैं। एक श्लोक में बताया गया है, यथा प्रियंग पत्रेषु गाढ़म आरुण्य रिच्यते श्रीमद् भागवते शास्त्रे राधा तत्व मिरियते। यथा, जिस प्रकार प्रियंगु, ये जो मेहंदी होती है ना, उसको संस्कृत में प्रियंग कहते हैं। आप सबको पता है कि मेहंदी के पत्ते हरे रंग के होते हैं, लेकिन उस हरे रंग के पत्तों में लालिमा छुपी है। प्रियंग पत्रेषु, मेहंदी के पत्ते कलर के तो हरे होते हैं, लेकिन उसको घिसा जाए, पीसा जाए, और इसमें रंग कौन सा बनता है, मतलब लाल रंग हरे रंग में छुपा है मेहंदी में। ऐसे ही श्रीमद् भागवते शास्त्रे, इसी तरह श्रीमद् भागवत में राधा तत्व छुपा हुआ, जैसे हरे में लाल छुपा है। आपको दिखता नहीं है लेकिन है, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा है। और चैतन्य चरितामृत में लिखा है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है और राधा उनकी पूर्ण स्वरूप शक्ति है, तो शक्तिमान बिना शक्ति के नहीं होता। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार हमने सुना था कि सही भी है, शक्ति के बिना व्यक्ति शव है, शक्ति के साथ शिव है, शिव मतलब मंगल करने वाले। तो शक्ति के बिना शक्ति, ऐसे शक्ति शक्तिमान में भेद अभेद बहुत सारा तत्व भी है, लेकिन हम इस सारे पचड़ में आपको नहीं फंसाएंगे, क्योंकि राधा रानी का बर्थडे है, तो सरल रूप में सरल बात बताएंगे, ताकि हमारे हृदयस्थ हो राधा प्रेम तत्व भक्ति। तो जैसे देखो ये श्लोक कह रहा है, अच्छा सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट नाम क्यों नहीं लिया, तो आचार्य वैष्णवों का कहना है कि राधा नाम मात्रेण मूर्छासन मासा भवे। अगर सुखदेव जी राधा रानी के नाम को, श्री नाम को ले लेते, तो राधा प्रेम भाव में इतने विह्वल हो जाते कि रोमांच कंपा अश्रु अष्ट विकार है ना, उसका अंतिम स्टेज है मूर्छा, 6 महीने की मूर्छा आ जाती, तो सुखदेव जी परीक्षित को कथा कब सुनाते। इसलिए उन्होंने प्रयास पूर्वक किया कि नहीं लेना, ताकि होश में रहे, कथा कहते रहे। इसलिए श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा क्षण मासा भवे, 6 महीने की मूर्छा हो जाती। इसलिए न उच्चारयते स्पष्टम, इसलिए स्पष्ट उच्चारण नहीं किया, समक्षम परीक्षित मुनि, वो मुनिराज ने, सुखदेव जी ने, जिसका जिसका मन केवल राधा का, कृष्ण की लीला का ही चिंतन करता है, मननशीला मुनय, और वे मुनि योगिनाम मुनिनाम गुरु सुखदेव जी ने स्पष्ट उच्चारण नहीं किया, लेकिन कर तो दिया परीक्षित के सामने। सुखदेव जी कौन है, श्री वृषभानु नंदिनी के वाम कर कमल विराजित श्री लीला शुक है। लीला शुको सो वृषभानु जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन। श्री वृंदावनेश्वरी अपने वात्सल्य रस से बारंबार उस चंचुपुट जो शुक है, उसकी जो चौंच है, उसको चुंबन प्रदान करके प्रेम का पाठ नित्य पढ़ाती है, वे है ये शुक। एकांतिकोन्यस्य रहस्य पाठी, कौन है सुखदेव, श्री राशेश्वरी जो के अत्यंत प्रेम पात्र और कृपा पात्र और अपने प्रियतम के संदेश वाहक दूत है यीशु। और रहते कहाँ है, सदा राधा रानी के धाम गोलोक वृंदावन, गोलोक प्रासाद सदा निवासी। कहने का तात्पर्य यह है कि आह्लादिनी शक्ति के अतरंग है शुकदेव, और जो कृष्ण प्रेम हमने तुमको पढ़ाया है, राधा रानी ने कहा कि हे शुक, आप भूतल पर जाकर कृष्ण प्रेमी विरह में व्याप्त उन भक्तों को इस प्रेम भागवत को जाकर पढ़ाओ। और राधा रानी की आज्ञा से वही गोलोक निवासी शुकदेव बनकर भूतल पर कृष्ण प्रेम प्रमाण प्रेमा पुमर थो महान ये भागवत सुनाने के लिए प्रकट हुए हैं। कोई सामान्य नहीं है। स्कंद पुराण में व्यास जी ने लिखा है, श्री नंद नंद रूपस्तो भगवान श्री शुको ऋषि ही, साक्षात नंद नंदन के स्वरूप शक्ति प्राप्त ये पुरुष है, कोई सामान्य नहीं है। इसलिए उसने राधा के नाम को कहा नहीं। वृंदावन के एक रसिक आचार्य हुए जिसका नाम है व्यास, उनके बहुत ब्रज भाषा में भजन प्रचलित है, और उन्होंने लिखा है कि सबसे बड़ा श्रेष्ठ सार नाम इस संसार में क्या, वैकुंठ की क्या, आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन का भी कोई सार नाम है तो है राधा। परम धन राधा नाम अपार, वो गाते हैं अपने भजन में कि सबसे बड़ा धन और जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, जिसमें कितना रस छुपा है, प्रेम छुपा है, भक्ति छुपा है, सेवा छुपा है, राधा नाम में इसको कोई कवि बता नहीं सकता। क्या क्या नाम की महिमा है तो वो कहते हैं, जाको श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। कृष्ण भी अपनी मुरली में जिस नाम को बार बार लेते हैं वो क्या है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, मुरली से भी यही निकलता। मंत्र तंत्र और वेद मंत्र में सब तारन को तार, जितने ही तंत्र है मंत्र है वेद है जो भी है उसमें बहुत कुछ है, लेकिन उन सब का ये सार है, श्री शुकदेव प्रगट नहीं भाख्यों जानी सार को सार। इसलिए सारों का सार होते होने के कारण शुकदेव जी ने श्री राधा नाम को भागवत में प्रगट नहीं रखा। अब राधा और राधा नाम और राधा प्रेम की महिमा को बताते हुए इस भजन का अंतिम लाइन में वो व्यास कहते हैं, वृंदावन के प्रेमी आचार्य, कोटिक रूप धरे नंद नंदन तब हु न पावे पार। कृष्ण युगे युगे रूप लेता है ना, स्वयं एक बार आता है लेकिन सब बार स्वयं ही आए ना सब बार, तो भी इनको पार नहीं पा सकता। राधा राधा प्रेम को राधा तत्व को दूसरों की बात ही छोड़ दीजिए, स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा हे श्री राधे और तुम्हें को जानन निहारा। जब कृष्ण ही तुमको नहीं समझ सकते नहीं पा सकते तो फिर औरों की क्या हम बात कहें, क्या बताएगी कौन राधा के विषय में बोलेगा, क्या कह सकता है। गीता में कृष्ण जी ने अपने मुख से कहा कश्चिन माम वेती, कश्चिन के पहले क्या शब्द लगाया, सहस्त्राणाम मनुष्येषु, और उसमें भी क्या क्या किया, उसमें से कोई मेरे तत्व को जानता। लेकिन ऐसे कृष्ण तत्व जानने वाले वैष्णवों में से लाखों लाखों में से कोई एक राधा तत्व को जानता, इतना ऊंचा है ये। तत्वन को तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र तत्वन तत्व कौन है, हमारे शास्त्र में तत्व की बहुत चर्चा है, गीता में कितनी बार तत्व शब्द आए, और हम इस्कॉन वालों को तो तत्व के लिए क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा तत्व है पंच तत्व जो दूसरों लोगों के पास नहीं है, ये भूमि आप अनलवा ये पंच महातत्व है, भूत तत्व वो तो सबको लागू होता है, फिर ये विष्णु तत्व जीव तत्व शक्ति तत्व वो भी सबको सबको होता है, लेकिन ये पंच तत्व जय श्री कृष्ण चैतन्य वो एक्स्ट्रा मिला हम लोग एक तत्व ऊपर से। तो तत्व मतलब प्रभुपाद जी ने अर्थ किया एब्सोल्यूट ट्रुथ वास्तविक सत्य, लेकिन कभी कभी कुछ वैष्णव लोग चर्चा तत्व मतलब भेजा भ्रा इधर का उधर क्या क्या बोल रहे, तत्व मतलब समझ नहीं आता क्या तत्व कह के रुक जाते, अब तत्व मतलब क्या बोले ओ तत्व मतलब वास्तविक वैधानिक स्थिति यथार्थ सत्य, ये कुछ अर्थ उसको पकड़ने के लिए कहे गए हैं लेकिन फिर भी क्लियर पकड़ नहीं पाते। तो तत्वन को तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, कृष्ण हु को तत्व वृष भानु की किशोरी है, और उससे भी बड़ा तत्व श्री वृषभानु नंदिनी जी है। और जब कृष्ण ही नहीं पकड़ सकते समझ सकते, हाँ शेष शारदा की मति भी शांत हो जाती है, तो फिर जीव के विषय में क्या कहे। हम जैसे मूर्ख लोग उच्च आसन पर माइक लेकर बैठ जाने वाले के विषय में क्या कहे। एक बात याद आती है चैतन्य चरितामृत में वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु का कावेरी के तट पर ब्रज तत्व के विषय में कुछ संवाद है लक्ष्मी जी के विषय में, आपने पढ़ा सुना होगा। और चैतन्य महाप्रभु ने पूछ दिया कि तुम्हारा लक्ष्मी विष्णु को छोड़कर कृष्ण की रास में और क्यों एंट्री चाहती है, ऐसा कुछ है ना, आप लोग तो पढ़े हैं भाई। तो वो पहले तो उत्तर दे रहे थे कि विष्णु कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लक्ष्मी चाहे विष्णु के पास जाए चाहे कृष्ण के पास जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चल ठीक है कि विष्णु और कृष्ण में भेद नहीं है, तो फिर लक्ष्मी को एंट्री क्यों नहीं मिला, गोपियों को मिला, श्रुतियों को, श्रुति भी गोपियां बनी, दंडकारण्य के ऋषि गोपी, उन सबको मिला, लक्ष्मी को क्यों नहीं मिला। तब इनकी बुद्धि चकराने लगी वेंकट भट्ट की। वो दक्षिण भारत के श्रीरंगम मंदिर के हेड पुजारी थे, मेन थे, उनके कई फॉलोअर थे, श्री संप्रदाय के बड़े व्यक्ति सम्मानित पुरुष थे, और उस जवाब नहीं दे पाए चैतन्य महाप्रभु के, ऐसा क्यों। तो जवाब नहीं दे पाए तब उन्होंने एक बड़ा अपने विषय में बात कहा, आमी जीव शूद्र बुद्धि सहज अस्थिर ईश्वर लीला कोटि समुद्र गंभीर। ये राधा और कृष्ण की लीला एक गंभीर समुद्र है, और मेरा बुद्धि एक छिप होता है ना, उसमें कीड़ा होता है, समुद्र में एक छिप होता है, और उसमें भी अस्थिर अनबैलेंस इंटेलिजेंट माइंड। अभी कहां कृष्ण की गंभीर कोटि समुद्र जैसी लीला, और कहां मेरे जैसा शूद्र जीव की अल्प मति। महाप्रभु आपके चरणों में प्रणाम है। अब आप ही बताइए, आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप ही बताइए, कहना पड़े। चैतन्य चरितामृत में भी आया है, तार गुण गणेर कृष्ण ना पान पार। राधा रानी के सद्गुणों समुद्र को तो कृष्ण भी पार नहीं पा सकते। तो तार उल्लेखन के नमुई जीव चार, तो उसको मैं अभी बोलने चला हूं, मतलब मच्छर मेरू उठाने चला, मच्छर मेरू पर्वत को उठा लूंगा भाई। कवि कालिदास की रघुवंशम की मंगलाचरण की युक्ति हमें स्मरण आती है, वो कहते हैं कि कहा रघुवंश और कहा श्री रामचंद्र, और मैं उस राम और रघुवंश की कथा लिखने बैठा हूं। जैसे छोटे से नाव बनाकर कोई विशाल समुद्र पार करना चाहे, तितीर्षु दुष्कर्मति नौका, मैं अपनी नाव जैसी छोटी बुद्धि से क्या पार करने चला हूं, समुद्र पार। का रघुवंश, रघुवंश तो कितना महान, ये आचार्य का दैन है। हमारे श्रीधर स्वामी ने भी भागवत जी में यही कहा है। लेकिन मुख्य रूप से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि राधा नाम के ही तत्व को लोग नहीं समझ पाते। परम धन राधा नाम पार, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी राधाष्टमी के एक लेक्चर में कहे कि वृंदावन में आप जाओ तो कृष्ण कोई नहीं कहता, सब क्या कहते हैं, राधे राधे। तो फिर कोई पूछेगी तो हमको क्यों हरे कृष्ण बुलाते हैं, अंदर से थोड़ा सा प्रश्न होता है ना हम लोग। इसका उत्तर भी प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर ने दिया है कि अगर आप कृष्ण नाम लेते हो तो कौन प्रसन्न होता है, कृष्ण नामे राधा सुख पाए। आपको राधा रानी को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा चाहनी है, तो क्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनके मन को क्या भाता है, कृष्ण, और कृष्ण को राधा। तो फिर हम लोगों को दोनों को प्रसन्न करना है, इसलिए हरे कृष्णा। देखो आपको पता नहीं था इसलिए लोग राधा राधे, तो कृष्ण के उसको पता नहीं कि क्या पॉलिसी क्या है, क्योंकि हमको अल्टीमेट राधा रानी को प्रसन्न करना है, इसलिए कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। और फिर बोले कृष्ण को भी चाहिए भाई, तो हरे भी बोलना पड़ेगा, इसलिए हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम। झगड़े में मत पड़ो, अपना प्रेम से काम निकालना जाना, बुद्धिमान उसको कहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड आदि पुराणों में, ब्रह्म वैवत आदि पुराणों में राधा नाम के विषय में बहुत लिखा गया है, रा शब्द उच्चारेण भक्तो, हाँ भक्त लोग रा शब्द बोलते ही अदुर्लभा प्राकृत जगत की जो वस्तु है मुक्ति लभे, मुक्ति को प्राप्त हो जाते। और धा शब्द उच्चारेण धावंती हरे पदम, धा शब्द बोलते ही वैकुंठ गोलोक वृंदावन का दरवाजा उनके लिए खुल जाता। राधा नाम की, राधा नाम से तो कोटि भव की बाधा मिट जाती है। और ऐसे ऐसे बहुत हिंदी संस्कृत में बहुत कुछ लिखा गया, यहां तक कि एक पुराण में तो लिखा गया है कि रा शब्द उच्चारेण स्फीतो भवति माधव, ये माधव कृष्ण जब रा सुनते हैं या बोलते हैं, लेकिन उच्चारण लिखा मतलब बोलते हैं, तो उसके हृदय में रोमांच कंपा हो जाता है। रा शब्द बोलते ही कृष्ण को क्या हो जाता है, हर्षो उल्लास रोमांच कंपा होने लगता है। और धा शब्द उच्चारेण धावंती तवेव संभ्रमा, और धा शब्द बोलते ही उसको भान नहीं रहता है, शुद्धि संभ्रम हो जाता है और उधर उधर भागने लगते, हे राधे तुम कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो करते भागते रहते पागल की तरह, इधर उधर उसका आउट ऑफ माइंड हो जाता है राधा बोलते ही। लेकिन एक बड़ा सुंदर अर्थ राधा नाम का हमको श्रीपाद पुरुषोत्तम महाराज जी के मुख से सुनने मिला, जो इस्कॉन जीबीसी वर्तमान मायापुर प्रोजेक्ट को संभाले हुए हैं। तो वो कहते हैं कि रा शब्दे न रास मंडले, रा शब्द रास मंडल को, वृंदावन का जय जय रास जय रास मंडल वही सब है ना सारो सार। और धा रास मंडले धावती, दौड़ रही है धावमान, और वो है राधा। राधा मतलब रास मंडल में जिसकी रति है मति है और गति है, वो तत्व है राधा। लेकिन एक शब्द है राधा तो ठीक है, लेकिन राधिका जैसे हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं तो एक कोटेशन में एक श्लोक दिया है बृहद गौतिमय तंत्र का कविराज गोस्वामी ने, तो उसमें वो कहते हैं राधा सॉरी देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। वो कहते हैं कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, और इसकी बड़ी बड़ी व्याख्या है देवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके शरीर से प्रकाश निकलता है, जिनका तन मन सब कृष्णमय है, और सभी देवता जितने भी है शिव ब्रह्मा विष्णु और कृष्ण उनकी भी ये देवता है, उनकी भी आराध्य है, कृष्ण की भी इष्ट आराध्य है। तो इसका अर्थ एक बार सरल हमने सुना था एक भक्त से कि राधा मतलब जो कृष्ण की सेवा करे और राधिका मतलब प्रेम से कृष्ण जिसकी सेवा करे, ऐसे ऐसे अच्छा है वो अर्थ भी। ओके सब अपना अपना, जब कोई कोई डाल बनती है ना डाल, तो सब अपना अपना नमक डालते फिर क्या करते मूल डाल को बिगाड़ देते, ऐसे भागीता में भी यही होता है, वेदों में भी यही होता है, सब अपना अपना भाव मनोभाव मिक्सिंग करते रहते, लेकिन वैष्णव का मत प्रामाणिक होता है जो शास्त्रों में होता है, और विशुद्ध वैष्णव का मन भी एक प्रमाणित माना गया है। तो उसके अनुसार जब हम सुने तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधिका शब्द का अर्थ वहां करते हैं जो श्लोक बोलते हैं, फिर उनका अर्थ समझाते हैं, तो कहते हैं कृष्ण वांछा पूर्ण करे रूप आराधने, जो अपने रूप से अपने व्यवहार क्रिया से कृष्ण की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, अतएव राधिका नाम पुराने व खाने। इसलिए इस कृष्ण परम प्रिया का अलादिनी शक्ति स्वरूपा श्री वृषभानु नंदिनी राधा का नाम पुराणों में क्या कहा गया है, राधिका। क कोमलता के अर्थ में कि जिनका श्री विग्रह स्वभाव सब कुछ कमल से भी कोमल है, रसमय है, सुगंधित है, सॉफ्ट कमल से भी कोमल एकदम कृपालु है, ये कम है ये सब छुपा है। क कोमलता अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे बालक तमद्भुतम बालकम शब्द में ये सब व्याख्या है, क का तो बाल शब्द भी होता था लेकिन बालक बाल बोलो भी चलता है संस्कृत में, कम लगाया जाता, तो उसके कुछ गुण विषय वैशिष्ट बताने के लिए। तो राधिका क्या इसलिए, क्योंकि कृष्ण वांछा पूर्ति करे रूप आराधने, अपनी व्यवहार सेवा भक्ति आराधना से जो कृष्ण को क्या करती है, पूर्ण प्रसन्न करती है, इसलिए इनको राधिका कहा जाता है। जैसे कि ललिता विशाखादि सखिया यहाँ वृंदावन में यमुना के तट पर राधा चरण रेणु, राधा चरण दर्शन करके बोल रही है कि हे सखी अनया, कोई एक दूसरी गोपी है जिसने हरि को प्रसन्न किया है, आराधना करके, सेवा करके, प्रेम करके, जिनको वश में कर लिया है, बंदी बना लिया है, अपना बना लिया है। कृष्ण ने राधा को इतना, राधा ने इतना कृष्ण से प्रेम किया है कि कृष्ण राधा के पूर्ण वश में है। सारा विश्व जिनके वश में है, वे विश्वेश्वर वृषभानु नंदिनी के वश में है। और जिस चरण को यहां गोपियां दिख रही है, राधा के चरण को देख रही है, देखो राधा चरण आश्रय की भी अपनी बड़ी महिमा है। श्रील प्रभुपाद जी ने तो इस लेक्चर में जन्म राधाष्टमी के लिए कहा है, लंदन में जब दिया उसने, तो कि अगर आप कृष्ण धाम, कृष्ण चरण प्राप्ति चाहते हो तो राधा रानी को प्रार्थना करो, उनका आश्रय ले लो। फिर आप में कुछ कमी गलती भी होगी, लेकिन राधा रानी कहेगी ये अपना आदमी है, चलो गेट खोल दो, कुछ नहीं चलेगा। श्याम सुंदर का वो अपना गीता का पोथा लेकर बैठेंगे, कर्मण्य और उद्वन गी, राधा रानी कहते बंद करो इसको, बंद करो, ये अपना केस है, आ जाओ, क्योंकि स्पेशल है। जिसने राधा रानी का चरण लिया उसको कृष्ण चरण स्वाभाविक, ये हम नहीं कह रहे, प्रेम भक्ति चंद्रिका में हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, जिसने अपने तन में राधा रानी के आश्रय लिया है, राधा चरण आश्रय लिया है, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायास पाए गिरिधारी। अनायास मतलब इजीली, कोई कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यह हमारे गिरिधारी की प्राप्ति आप चाहते हो, अनायास सरलता से बिना तप प्रजप मेहनत के इजी, तो राधा कृपा होनी चाहिए, राधा चरण आश्रय होना, राधा ने रिकमेंड कर दे तो काम कंफर्म बन गया तुम्हारा है। तो उसके उसके बाद वो ये कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि राधा चरणाश्रय जे करे से महाशय, जो राधा रानी के चरणों की वंदना करता है, शरण लेता है, वो महाशय व्यक्ति है, महानुभाव है, त्रिभुवन में सबसे सौभाग्यशाली है। श्री राधा चरणाश्रय जे करे से महाशय, तार मुई जाऊं बलिहारी। जिसने राधा रानी की चरण शरण लिया है उसको मैं बलिहारी जाती हूँ, मैं उनकी शरण लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो संकल्प स्तव माला में यहां तक कह दिया, अनाराध्या राधा पदाम्भोज युग्म, युग्म मतलब दो, युग्म मतलब दो, पद अंबुज, अंबुज मतलब कमल, चरण कमल, राधा पदाम्भोज युग्मम अनाराध्य, मतलब जिसने राधा रानी के चरण कमल की शरण नहीं ली, आराधना नहीं की, कथम श्याम सिंधु रसम अवगावह, वो श्याम सुंदर के रस सिंधु का बिंदु भी नहीं पाएगा जिसने राधा रानी के चरण की शरण नहीं। क्यों? क्योंकि राधा बिना वृंदावन के रसिक तो कहते श्याम आधा, बोले ऐसे कैसे हो, तो उसके लिए तो गीत, उसके लिए तो वेदों में लिखा है पूर्णम अदम पूर्णम इदम, और आप ऐसे ही अपने मन से झाड़ते रहते हो, जो कुछ भी बोलते रहते हो, प्रमाण दो, कुछ बात करो तो प्रमाण वाली होनी चाहिए, वैष्णव से सम्मानित होनी चाहिए, है ना, मन की तो चलेगी ना। गोविंद लीला अमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, जब ये जिसको हम मदन मोहन कह के बुलाते हैं ना, कृष्ण का नाम है मदन, मतलब कामदेव को भी मोहित करता है, इसलिए उसका नाम मदन मोहन। और राधा रानी के जब संग में होते हैं, गिरधारी के अकेले गिरधारी हो, श्याम सुंदर हो, चाहे रास बिहारी हो, संग में जब राधा आ जाती है बाम बाम भाग में, तो राधा संगे यदा भाति, तो ऐसे लगते हैं कृष्ण तदा मदन मोहन, कृष्ण का नाम जो मदन मोहन है वो राधा के सानिध्य संग में सार्थक है। अन्यथा विश्व मोहन अपि स्वयं मदन मोहित। कविराज जी कहते हैं गोविंद लीलामृत में कि पूरे विश्व के सबको लुभाते हैं ना कृष्ण, आकर्षण करते हैं ना सबको अपनी लीला से, नाम से, रूप से, बंसी से, सौंदर्य से, कर्षति कृष्ण विश्व को मोहित कर देते हैं। स्वयं विश्व मोहित है, मोहन कर, विश्व को मोहित करने वाले विश्व मोहन है। लेकिन अन्यथा राधा जब न हो तो ये भी मोहित हो सकते है मदन के द्वारा। इसलिए कविराज जी ने इसका बंगला में सरल अनुवाद किया, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी। पूरे जगत को कृष्ण मोहित करते हैं लेकिन उसको भी कौन मोहित करता है? राधा रानी। अतएव परा ठकुरानी, इसलिए ये परम ठकुरानी है। त्रिलोकी के ठाकुर कौन है? नंद नंदन। और उस ठाकुर की भी ठकुरायन है श्री राधा रानी की, उसकी भी ठकुरायन है। इसलिए वृंदावन के भक्त गाते हम चाकर राधा रानी के, ठाकुर सी नंद नंदन के। हम नंदन ठाकुर है हमारे ठकुरायन वृषभानु लली के। क्यों? क्योंकि ये श्याम सुंदर वृषभानु की लली के गली को गुलाम है। हमारी वृषभानु जिस गली से गुजर जाती है ना वहां झाड़ू बारते हैं ये तुम्हारे योगेश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर जो भी तुम कहते हो। तो ये है राधा, वृषभानु की लली के गली को गुलाम है ये तुम्हारो बनवारी। बात करे छते हमारे गुजराती में कैसे बात करे छे तेरे निकल। बात करे छते ऐसे ही बोलते हैं ब्रज के लोग। उसको इतना राधा रानी की निष्ठा है उनके चरणों में, उनको इनका आश्रय है पक्का है। और वो सुखदेव जी भी और हम चैतन्य चरित सुख सारी का संवाद भी इसी में है। वो सारी कहती है कि, और सुख कहता है पोपट अमार कृष्ण मदन मोहन, तो सारी कहते हैं अमार राधा मदन मोहन मोहिनी। हमारे कृष्ण मुकुट पहनते हैं तो कैसा पहनते हैं? तिरछा टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है इस अदा से, उनकी अदा है टेढ़ा रखते हैं। लेकिन सारी कहती है कि वो तुम्हारे मुकुटधारी ये मोर मुकुट वाला अपने मुकुट के साथ शरण शरण अपने सिर के साथ हमारे प्रिया जी के चरणों में प्रणाम कर रहा है। देखो तेरे कन्नवा को मुकुट झुक्यो है हमारे राधा के चरणन की ओर। ऐसे हिंदी भजन में भी है ना, वही एज इट इज बात है। ये है राधा, कृष्ण भी कहां पार पाएंगे इनको, इनके नाम को। तो हम बात करें राधा नाम या राधिका और राधा कृष्ण से मिलित कुछ बातें। लेकिन तत्वत श्री राधा कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ही राधा बने। स्वयं श्री, जैसे चैतन्य चरितामृत में कविराज जी ने लिखा है राधा कृष्ण प्रणय आक्र अलादिनी शक्ति रसमात, उस श्लोक का बंगला बना बंगला निरूपण कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा तत्व के विषय में कहते हैं कि राधा कृष्ण एक सदा एक ही स्वरूप। सदा राधा और कृष्ण क्या है? एक ही स्वरूप। लीला आस्वादने धरे दुई रूप, लीला रस की आस्वादन के लिए वो दो बनते हैं। और गोलोक वृंदावन की कथा में अनंत संहिता में लिखा गया है कि श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में मधुर निकुंज में विराजमान थे। और उस निकुंज की बड़ी लंबी चौड़ी कथा है कैसे पुष्प थे और कैसा मनोहर पक्षियों के कलरव, यमुना का नीर बहता हुआ, बड़ा सुंदर रमणीय वातावरण, वृंदावन रम्य स्थान, समझ लीजिए उस लाइन के अनुसार। और रतन मंदिर मनोहर, और यमुना जी में क्या खिले है? यमुना जी में सुवर्ण कमल का कमल खिला है, पिंक कलर का कमल खिला है, पीला कलर का खिला है, लेकिन यमुना के तट पर नीला कमल का खिला है। ये नीलमणि लाला ये भी नीलकमल है। तो यमुना में अलग अलग कलर है और यहाँ नीलकमल खिला है। यशोदा की गोद में कन्हैया कैसे लगते थे? तो कवि कर्णपुर जी आनंद वृंदावन चंपू में कहते हैं कि जैसे सुंदर सरोवर में नीलकमल खिला हो ऐसे यशोदा की गोदी में हमारो लाला लगते हैं। जैसे सरोवर में कमल खिला, ये नीला कमल है चमकता हुआ, तो कृष्ण ऐसे ही बैठे थे और स्वयं क्या है, सच्चिदानंद है, पूर्ण है, आत्मा राम है, पूर्ण काम है, जो भी बोलो उनके लिए। लेकिन वही उपनिषदों में उसी तत्व परब्रह्म के विषय में हमारे उपनिषद कहते हैं सकामयते, वो भी इच्छा करते हैं, वो भी कामना करते हैं। एकाकिन रमते, अकेले वो क्या करेंगे, उसके अंदर ही है आनंद, है आनंद घन है। कृष्ण के शरीर में क्या मसाला है, आनंद भरा है, कृपा भरा है, ज्ञान भरा है, हमारे जैसा कुछ नहीं है उसमें, वो दिव्य है सच्चिदानंद विग्रह। लेकिन जब वो चाहते हैं एको बहुस, वो बहुत बनना चाहते हैं आनंद के लिए, तो उसी कृष्ण के शरीर का जो आनंद तत्व है उसने एक रूप धारण किया, एक फॉर्म, एक रूप लिया है। आलादिनी शक्ति जो आनंद स्वरूपा, चित्त स्वरूपा है, जिसको हम आलादिनी कहिए, चाहे स्वरूप शक्ति कहिए, चाहे अतरंग शक्ति कहिए, उसने रूप लिया, वो है राधा। तो कृष्ण ऐसे ही सोच रहे थे कि उन्हीं के शरीर से एक दिव्य सौंदर्य रमणीय मनोहर राधा रानी प्रकट हो गई। और वो कोई नहीं है, जैसे माने कहे कि आप कहते कि देह देही में भेद नहीं होता भगवान में, शरीर और आत्मा, भगवान भगवान स्पिरिट है ना, हमारी तरह नहीं है, तो फिर राधा कैसे प्रकट हुई। इसीलिए स्कंद पुराण में यह भी कहा है आत्मा तो राधिका तस्य, राधा रानी कौन है, कृष्ण का आत्मा, क्योंकि आत्मा प्राण प्राण में कोई भेद नहीं है, कृष्ण पूर्ण है, लेकिन उन्हीं की शक्ति आनंद, उन्हीं का आत्मा, वही एक रूप लिया, क्यों, लीला करने के लिए। जैसे कविराज जी ने कह दिया लीला आस्वादन है धरे दुई रूप, और वही प्रकट होके बाजू में बैठ गई। कृष्ण निकुंज में बैठे हैं, सुंदर कमल, अष्टदल कमल, और उसमें रत्न वेदी लगी है, और उसमें श्याम सुंदर विराजमान है, तो प्रिया जी बाजू में आकर विराजमान हो गई। तार मध्य रत्नासने बसिया छे दुई जाने, श्याम संगे सुंदरी राधिका, राधिका विराजमान है बाजू में। अब दोनों का काम क्या है, क्योंकि एक रसो रसिक शेखर है और एक साक्षात वही रस मूर्तिमान रूप बना है, तो अब तो रास होगा, है ना, जय जय रास लीला सर्व रस सार। तो रास मंडल की ओर जिनकी रति मती, गोलोक वृंदावन में प्रिया जी के प्रागट्य के विषय में हम बद्ध मूर्ख जीवों को समझाने के लिए बात है, बाकी वो एक ही है, वो नित्य है, नित्य प्रियतम है, शाश्वत प्रेमी है, लेकिन पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लीला करते हैं हमारे उद्धार के लिए, हमें कर्म बंधन जन्म बंधन से छुड़ाकर प्रेम राज्य की ओर ले जाने के लिए। लेकिन इसी किसको किसी परंपरा में आने वाले प्रेमी वैष्णव से सुनेंगे तब लाभ प्राप्त करेंगे, नहीं तो गड़बड़ होगा, फिर गड़बड़ करेंगे। तो जैसे वो श्लोक है देकात्मा भूवि रूप भेदम गतो, तो आपने चैतन्य चरितामृत मंगलाचरण पढ़ा हो तो उसमें कविराज जी चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते हुए कहते कि वो राधा और कृष्ण दो है गोलोक वृंदावन, लेकिन देकात्मा वो दोनों एक बन गए, जो अलग अलग थे लेकिन प्रकट एक के मधुना, अब वो क्या गए, क्या हो गए दोनों, और क्या बन गए, श्री गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु की, सचिनंदना की। क्यों, क्योंकि अगर ये गौर नहीं होते, यदि गौर नहीं तो तबे की हुई, तो अगर चैतन्य महाप्रभु भूतल पर प्रकट नहीं होते तो क्या होता, राधारम हिमा प्रेम रस सीमा, राधा रानी की महिमा जो प्रेम रस की बाउंड एंड है, कोई पार नहीं पा सकता, जगत जाना तक के, जगत वाले कैसे जानते कि राधा रानी क्या है, कृष्ण प्रेम क्या है। और कृष्ण की भी बात हम चर्चा करें तो राधा मेरे प्रेम में कितना माधुर्य रस आस्वादन करती है, वह जानने के लिए तो कृष्ण गौरांग बने, तस्चास्यम लोल्यम है, उसी रस को चखे मदनुभाव, उसी को लेने के लिए तो गौरांग बनना पड़ा कृष्ण को भी। और जहां तक कृष्ण प्रेम प्रदान करने की बात है, कृष्ण साक्षात प्रकट होकर भी गीता का ज्ञान दिए लेकिन प्रेम नहीं दे पाए, उसके लिए तो हमारे किशोर जी का हृदय उसको चोरी करना पड़ा, राधा के हृदय को चुराया, उनके शरीर की कलर कांति को चुराया, और क्या बन गए, मीरा जी ने गाया है श्याम किशोर भये नव गोरा। अब तो हरि नाम लव लागी, मारवाड़ की मीरा है ना, रेगिस्तान की गंगा, प्रेम प्रेम पुजारन कहते, महारानी होकर गलियों में नाचती थी गिरधर के नाम पर, दुनिया की ऐसी की तैसी मीरा के लिए है। मीरा ने खूब बढ़िया से प्रेम किया खुले दिल से। हम कई भक्त तो सुना रहे थे रात में गिरु, मीरा कहती है कि दुनिया रात भर सोती है लेकिन मीरा कृष्ण के प्रेम में रात भर रोती है। हमारी तो रात सोने में ही गई लेकिन मीरा की, हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में राधा भाव में बस केवल रोते थे। और आचार्यों ने लिखा है, क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार्णव, अगर तुमने क्रंदन रोना सीख लिया ना तो करुणा सागर दूर नहीं है। इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य श्रीपाद गौर गोविंद महाराज कहते थे कि ये चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन प्रभुपाद जी ने जो चलाया है वो क्या है, रोने की पाठशाला है। यहाँ रोना सिखाया जाता है कृष्ण प्रेम में, और बाहर हंसने से भी ज्यादा आनंद है। बाहर हंसने में देखो, हंसना एक अच्छा है लेकिन बिना मतलब के हंसना मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं लोग, है ना, कोई कारण तो होना चाहिए, हंसने की कोई वजह होनी चाहिए, इसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। और जगत में आप रोना हंसना एक समान है क्योंकि ये दुखालय है, ये जड़ जगत है। वहां कोई हंसता है तो सुखी नहीं माना जाता, जैसे बाहर कोई हंसता है तो आप सुखी, पागल हंसता ही है तो इसका अर्थ तो सुखी नहीं है, समझ रहे हैं आप। बुद्धि होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। न जाने तेरे दरबार में आकर क्या सुख पा गए हम, एक कवि ने लिखा है गौरांग चैतन्य की चरणों में कि हंसते थे तब भी दुनिया में थे दुखी कितने हम दुनिया में बाहर जब भक्तों के संग में नहीं आए, इस्कॉन से नहीं जुड़े, महाप्रभु की शरण नहीं ली, दुनिया में बाहर थे तो हंसते थे, पिकनिक में जाते थे, धंधे में कहीं, हंसते थे तब भी थे दुखी दुनिया में कितने हम, तेरे दरबार में रोने का सुख पा गए कैसे। लेकिन यहां रोने में भी आना क्योंकि ये राधा रानी का दरबार है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। राधा रानी सारी बाधा दुख दर्द कृष्ण प्रेम विघ्न सब हर लेती है अगर कोई उनकी शरण में सच्चे मन से जाए, उनको याद करे, उनको हो जाए, उनका हो जाए। रूप गोस्वामी कहते हैं ना, गंधर्वी के निज गणे गणना विधेही, प्रार्थना करते दंडवत करते हुए रोते हुए, हा देवी काकू भर गद गद याद वाचा याचे निपत्य भुवि दंडवत उद्भतारती हूँ, यस्य प्रसाद अमुदस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके, हे गंधर्विके निज गणे, अपनी मान लो हमें, निज गणे अपना गण मान लो, अपना बना लो, हो गया काम बेड़ा। राधा रानी अपना मान ले उसका काम, इसी के लिए सारा प्रयास हो रहा। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नहीं होते क्या होता, इसने दिया है। तो राधा रानी कृष्ण गौरवण, जैसे मैं मीरा की बात कर रहा था, उसने अपने भजन में इसको क्लियर कह दिया है, मात यशोमती माखन काजे बांधे जाको पांव, वही नंद नंदर भय नव गोरा, वही सन्यासी बने जिसके मोर मुकुट रहता था, मुरली रहती थी और कमंडलू दंड लेकर नदिया नगरे दंड कमंडलू करे, क्यों, पापी तापी यथ छिलो हरि नाम प्रेम, गोलो केरो वैभव लीला, और हरि नाम का प्रचार वासुदेव घोष ने जैसे गाया चैतन्य महाप्रभु के अवतार का, और वो साक्षात कृष्ण है लेकिन हृदय और भाव और कलर किसका है, श्री राधा रानी। इसलिए कृष्ण करुणा सिंधु है और राधा रानी का हृदय, तो करुणा डबल हो गई, आपड़ो मेल पड़ी गयो, बिना अकेले कृष्ण ना आपड़ो मेल पड़े मतो नहीं, अपना काम बनता नहीं, लेकिन डबल हो गया ना, किशोरी जी माँ दयालु थी करुणा में, हाँ उसने बोला ले लो इनको दे दो, तो कोई अवतार में इसलिए अनर्पित चरिचरात हो गया, नहीं तो यही अवतार में गौरांग किए ये काम, और किए उसके पीछे काम हाथ किसका है, आलादिनी करेर भक्तेर पोषण, ये हम भक्ति कर रहे हो राधा रानी की विलास शक्ति भूता, आलादिनी शक्ति की विलास वृत्ति है भक्ति, उनकी कृपा के बिना कोई भक्ति भी, क्योंकि भक्ति का खजाना की चाबी किसके पास है, राधा रानी के पास, उनके वो भक्ति का भंडार, कृष्ण भक्ति के वश होते हैं लेकिन वो भक्ति की राजा कौन है, राधा रानी, जो उनकी शरण आश्रय करता है उनको एक प्राप्त होता है। तो उस विकृत आलादिनी शक्ति रस्मा की मैं बात कर रहा था, तो उसके तात्पर्य में जैसे कविराज जी का श्लोक कहा कि एक आत्मा लीला स्वादरे दुई रूप, उसी बात में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो उसमें एक बात वो कहते हैं कि राधा कृष्ण एक रूप दुई देह धरी, वो एक आत्मा है लेकिन दो देह दे रहा, कृष्ण श्री विग्रह सचिदानंद, ये भी राधा रानी मूर्तिमती वृषभानुनंदिनी के रूप में आई, कीर्तिदास सुंदरी के घर प्रकट हुई आज के दिन, दुई देह धरी क्यों? तो इसका उत्तर देते हैं कि रस आस्वादन, अन्य अन्य विलसय रस आस्वादन करी, ये दोनों आपस में क्रीड़ा करेंगे, लीला करेंगे और रस की वृष्टि करेंगे, सृष्टि करेंगे, और प्रेमी वैष्णव जगत को इसमें आप्लावित कर देंगे इस प्रेम की बाढ़ में, इसलिए इन दोनों ने ये रूप लिया। और पूछा गया था कावेरी गोदावरी के तट पर महाप्रभु द्वारा रामानंद राय से कि सबसे श्रेष्ठ श्रवण करने के लिए बहुत विषय है लेकिन सबसे श्रेष्ठ श्रवण क्या है, राधा कृष्ण प्रेम के लिए अधिकार नहीं है हमारा लेकिन सबसे बेस्ट श्रवण राधा कृष्ण की प्रेम लीला होगा, वास वृंदावन बताया, श्रेय भक्तों का संग बताया, दुख भक्तों का विरह बताया, बहुत सुंदर संवाद है रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु जी का, हाँ तो उसमें ये सारी बातें हैं। तो हमारे प्रभुपाद जी उपदेशामृत के इंट्रोडक्शन में इस बात को रखते हैं कि कब कृपा होगी रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी की, कबे हाम हरिबो श्री वृंदावन, जैसे उस लाइन में नरोत्तम जी कहते हैं, उसी लाइन में उसके बाद वाली लाइन में कहा गया है कि रूप रघुनाथ पदे हईबे आकृति कबे हाम बुझब युगल प्रीति, इन युगल सरकार का जो प्रेम व्यवहार है वो रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी ने जैसे साधना बताया है उस तरह साधना करके सेवा करके इंद्रियों को शुद्ध करके हम उस प्रेम रस तक पहुंच सकते हैं, सहजिया वृत्ति नहीं करना, हाँ भाव में आ गया, हाँ हाँ भाव प्रकट, कुछ प्रकट नहीं होता है, ड्रामा नहीं करना चाहिए, रियल अपने इंद्रियों को शुद्ध करना है सेवा करके साधना करके और वो लाया नहीं जाता, आ जाता है, ये आने वाली वस्तु है, उसको खींचा तानी देखा देखी नहीं चलता है इसमें, इसलिए हम लीला तो ये सुनाने जा रहे, बात बड़ी ऊंची कर रहे हैं, हमारे मुंह से तो शोभा भी नहीं देती, हम पूरा पूरा जानते लेकिन यहाँ बैठे हैं तो जो बात है वही बात तो कहेंगे। अब राधा रानी का जन्म है और आपको ये थोड़ी कहेंगे कि नरक में इतने ये पाप किया तो नरक में जाएगा, वो भागवत का ही बात है, गीता में लिखा है कि रजोगुण में जो रहेगा तो नीचे के लोकों में जाए, वो भी गीत, लेकिन जो परिस्थिति होता है प्रसंग होता है उत्सव होता है उस अनुसार सुनाया जाता है। इसलिए आप वैष्णव लोग धैर्य से बैठे हैं, ऊंचे मन से सुनिए, हम मानते हैं कि हम इसके लायक नहीं है लेकिन हम उस पवित्र परंपरा में है प्रभुपाद जी की और वैष्णव धर्म में है, तो हम जैसे बालक होता है वो पहली सीढ़ी पे होता है लेकिन उसको पता तो होता है कि मुझे वहां जाना, भले हम पहली सीढ़ी पे खड़े लेकिन हम सुन रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए फिर साधना है, सेवा है, नियम है, यम है, उसको पूर्ण रूप से करना है, सीधा जंप मारेंगे तो गिरेंगे भी ना, उसको सीखना है, इसी को आदो श्रद्धा ततो साधु संग जैसे हमारे रूप गोस्वामी ने बताया। तो सारी सारी सिद्धांतित बातें कहो, लीला कहो, तत्व कहो, सब गड़बड़ सुनाने में बहुत समय जाता है, इसीलिए फिर भी हम तत्व सुना रहे हैं राधा रानी के, और उस शास्त्र से श्लोक देकर प्रमाण देकर। वैसे भी आप लोग बहुत जप करते हो, नियम पालन करते हो, इस काम से जुड़े हो, कई बार सुने हो, तो इसीलिए मैं साहस कर रहा हूँ ये सारी बातें बोलने का बताने का। बस हम प्रार्थना करते हैं गिरधारी और राधा रानी के चरणों के, वो हमें शुद्ध मति दे, शक्ति दे, बुद्धि दे, ताकि हम उनकी लीलाओं को हृदयस्थ करके हमारे हृदय से काम क्रोध को मिटाकर कृष्ण प्रेम को प्रकट कर सके। और इसका प्रथम सोपान है सुनना, श्रवण जो हम कर रहे हैं। इसके लिए मैं ये लीला कहने अब जाऊंगा तो उसके पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ, नहीं तो बाहर चर्चा होगी, हे आयुर्वेदी बात केवन क्या जरूर, हम तो ऐसे नहीं, सब वही सब बोलेगा उसका बोलेगा तो तू आयु जल है बेस। जो दिया जाता है उसको उसको सौभाग्य समझना चाहिए। यस हम जीव है और त्रुटि तो है, दोष है चार हम में, लेकिन हम बात वो कर रहे हैं जो अपौरुषेय वाणी वेद कहता है, तो उसको जस्ट रिपीट सुना रहे कि ऐसा लिखा है, इसका ये हिंदी किया गया, और इससे अच्छा आप वैष्णव साधना करके समझते हो तो और अच्छा है और बढ़िया आगे। बस उसको हमें तोते की तरह रिपीट करना है, इससे हमारा कान शुद्ध होगा, सुनेंगे तो, बोलेंगे तो वाणी शुद्ध होगा। लेकिन ऐसा जो बोलते सुनते उनकी निंदा करेंगे ना, तो नरक का रिजर्वेशन कंफर्म होगा। इसलिए थोड़ा धैर्य भी रखिए, ऊंचा मन भी रखिए, और अपने तुल्य मत समझिए। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ये प्रेम राज्य का वैभव है, माधुर्य है। इसको इस जड़ जगत में जैसे काम के अनुभूत वशीभूत स्त्री पुरुष या पिक्चर मूवी देखते ऐसे देखेंगे तो भारी अपराध के कारण। लेकिन यही पर हमारे चक्रधिपाद आशीर्वाद देते हैं कि जो इस संवाद को सुनता है रास पंचायत दिन, उसके हृदय से काम विकार चला जाता है, क्योंकि राधा कृष्ण निर्मल प्रेम भास्कर शुद्ध सोना है। और ये काम तो लोखंड है ना चैतन्य चरितमृत के अनुसार, लेकिन उसको सुनेंगे तो हमारे काम क्रोध लोभ चले जाएंगे। लेकिन कैसे सुनना है? श्रद्धा और आदर से, ऊंचे मन से, कि ये बहुत ऊंची बात। इसको इस सदृश मिश्री, मिश्री का टुकड़ा हो मीठा होता है और फटकड़ी, दिखता समान है लेकिन गुण धर्म में बहुत भेद होता है। ऐसे दिखता है विषय में लेकिन बहुत अंतर है इसमें। कृष्ण पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और इनकी करोड़ों शक्तियां है, जैसे वेद कहता है परास्त शुक्ति विधेय सुयत। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि करोड़ों शक्तियों में तीन मुख्य है, अतरंगा जो आध्यात्मिक जगत में योग माया कहे या चाहे स्वरूप भूता या अलादिनी जो, दूसरी है तटस्था हम लोग जैसे जीव, और बहिरंगा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जिसको माया कहे। बहुत शक्तियों का विश्लेषण सेक्शन किया जाए तो ये तीन है। अब इसमें बहुत विभाग है, जैसे जीव कई प्रकार के लौटी को भी अलग अलग माया के वशीभूत होकर बहिर्माया से संपर्क में अलग अलग रजस तमस प्रकट करते, योग माया में अंदर में आ जाते तो सत्व गुण आदि शुद्ध चेतना को प्रकट करते, वो मार्जिनल पोटेंसी है, इधर उधर उसका इंटरफियर चलता है ना। जैसे भगवान गीता में कहते महात्मानस तो माम पार्थम देवी प्रकृति, और उसके बाद 16वें अध्याय में कहते आसुरिम भावमासी, वो दोनों है ना, इधर भी है इधर भी है, हम आत्मा है लेकिन महात्मा बनना की दुरात्मा वो अपने आत्मा है। आत्मा के आगे क्या लगाना है, दू म सु, वो सब अपने कर्म पर डिपेंड करता है ना। तो तीन मुख्य है, तो ये तो बहिरंगा तो हो गई सत्व रजस तमस जीव भी, अब समझना है अतरंगा। अतरंगा के विषय में बड़ा सुंदर है कि आलादिनी संधिनी और संवित। संधिनी माने सत्ता जो धाम निर्माण करती है सब, और चित्त ज्ञान, और आलादिनी जो है अर्थात आनंददायिनी जो है वही है श्री मूर्तिमान राधा, और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान शिव शक्ति। तो बहुत कुछ है, गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी। चैतन्य चरितमृत ने कहा कि गोविंद को भी आनंद देने वाली कौन है, राधा, और गोविंद को भी मोहित करने वाली। गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व, गोविंद का सर्वस्व है, सर्व कांता शिरोमणि। गोविंद की, कृष्ण की जितनी कांता है प्रिया है उसमें क्या है, शिरोमणि सर्व। जैसे कृष्ण राम नरसिंह वरा वैभव विलास प्रादुर्विलास बलराम बनते चतुर्भुज बनते चतुर्व्यूह प्रकट करते वही करते ना सब, ऐसे ही मूल शक्ति है राधा, वो भी क्या करती है, अनंत कोटि गोपियां कृष्ण के विलास के लिए काय व्यू अपनी प्रकट करती है करोड़ों गोपियों के रूप में, वही 16108 महिषियों के रूप में, और वही वैकुंठ में लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। लेकिन मूल कौन है, राधा, जैसे स्वयं कृष्णस्तु भगवान। ऐसे सरलता से समझिए बात को, कि जैसे ये लेते ये भी इनकी लीला में रहती है, लेकिन सर्व कांता शिरो। और उसमें स्पेशलिटी क्या है राधा रानी की, आपने एक शब्द सुना होगा महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी। आपको पूछा महाभाव, महाप्रसाद का पता है महाभाव ये क्या है, होगा कोई ऊंची बात बोल रहे हैं आप, इतना तो समझ में आता है कि आप कुछ बोल रहे हैं महाभाव स्वरूप। इसके लिए खूब महामंत्र जपना पड़ेगा और महाप्रसाद भी खूब खाना पड़ेगा, दो काम बढ़िया करिए तो धीरे धीरे ये सब भाव महाभाव अपने आप आएगा, समझाएगा, सब होगा। बिना महामंत्र जपे बिना महाप्रसाद का काम बनेगा नहीं। तो हमको तो कोई ऊंचा प्रश्न कोई पूछता है तो ऊंची बात बोलते, उसके पहले मैं यही बात कहता कि आप दो काम करो, महाप्रसाद खाओ महामंत्र जपो, बाकी सब हो जाएगा। वो सब राधा रानी प्रकट करेगी दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। लेकिन कविराज जी ने थोड़ा अर्थ बताया कि आलादिनी सार नाम प्रेम सार भाव। आलादिनी का सार ही है प्रेम, और प्रेम का सार है भाव। भाव भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव, और उस भाव का भी एंड पराकाष्ठा को क्या कहते हैं महाभाव। अभी भाव के अंकुर भक्तिरसामृत सिंधु में भाव के विषय में बहुत बताया गया, लेकिन अभी भाव बहुत कम है, डॉलर के ज्यादा है रुपये के कम है। तो क्योंकि हम लोग भाव जगत में है, भाव की बड़ी महिमा है, भाव के बिना कुछ नहीं। सब लोग भाव ताली तो करते हैं, माता जी भी बटे का के महिमा, अरे प्रभु जी जाएंगे तो ये के भाव ताली होता है ना सब जगह, भाव के बिना कुछ नहीं है। और हमारे कृष्ण भी भाव ग्राही है, भाव का चर्चा सब जगह चलता है, बिना भाव के कुछ वैल्यू नहीं है। ऐसे श्लोक है ना, वो गंगा में मछली भी रहती है, नाग भी रहता है, सब रहते हैं, लेकिन वो कुछ इतना गति नहीं पाते, क्यों? उनके भाव नहीं है, बिना भाव के काम नहीं है। श्रद्धा भाव की अपेक्षा रखता है शास्त्र या तीर्थ या मंत्र हमारी सफलता पर, आपकी श्रद्धा या भाव की। और भगवान भी कहते भक्त्यामा अश्नामी, और हमारे लोग कहते भी भगवान को भाव के भूखे, वस्तु तुम तुम्हारे पास रखो, भाव कोरो भाव नो आले भाई लुखाराम, वो भाव है वो वस्तु से ही प्रकट होता है। लेकिन हम लोग क्या, भगवान तो भाव के भूखे है ना, और तुम किसके भूखे हो, महाप्रसाद के। ओके चलेगा। तो ये थोड़ा शब्द मैं कहता हूँ कि ऊंचा है, लेकिन भाव के अंकुर जैसे है विरक्तिमान शून्य व्यर्थ कालत्वम आदि, और उसकी बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं, लेकिन कविराज जी व्याख्या वहां नहीं करते हैं। चैतन्य चरितामृत में निर्देशात्मक बातें हैं, उसका विशद व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में है, आप भक्तों के पढ़ने के लायक। हाँ, और फिर कहते हैं महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठकुरानी, और महाभाव स्वरूपा क्या है राधा, सर्व गुण खनी सर्व कांता शिरोमणि, वहां पर भी यही लिखा गया। उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी कहते हैं तयो रूपयो मध्य राधिका सर्वाधिका, जितनी कृष्ण की प्रिया कांता है उसमें राधिका क्या है सर्वाधिका, सरल भाषा में। और महाभाव स्वरूपेय गुणे रति वरीयसी, उज्जवल नीलमणि का श्लोक। तो ऐसे अलादिनी के रूप के विषय में, तत्व के विषय में ऐसी बहुत बातें, रात भर बोलते रहेंगे खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं इसको तत्व को सिमटना चाहता हूँ, लीला में जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मन होता है कि इसको बोलते रहे तत्व को ही। लेकिन बहुत कुछ है इस तरह राधा रानी के विषय में। मुख्य रूप से हमें ये समझना है कि कृष्ण की पूर्ण शक्ति कृष्ण लीला रस आनंद के लिए राधा रूप में आज के दिन कीर्तिदा महारानी और श्री विश्वभानु बाबा के आंगन में प्रकट। जन्म प्रकरण अंतर्गत बहुत कथाएं अलग अलग पुराण कल्प भेद से है, लेकिन जैसा कि आप लोग सरल भाव से जानते हैं, श्री धाम रावल में यमुना में श्री विश्वभानु बाबा स्नान कर रहे थे। विश्वभानु कौन है, महाभानु नाम के गोप थे, और उसके पांच पुत्र थे रत्न भानु सुभानु प्रीति भानु, और उसमें एक थे वृषभानु। और उसी ब्रज 84 कोस गोवर्धन के पास एक गांव है जिसमें रहते थे बिंदु नाम के गो, और बिंदु की भारिया का नाम था मुखरा। बिंदु और मुखरा से जन्म ली 3 पुत्रिया और 5 पुत्र, भद्र कीर्ति श्रुत कीर्ति सब पुत्र के नाम है, लेकिन भानु कीर्ति और कीर्तिमती और छोटी थी कीर्ति दा। किसकी किसकी पुत्री है कीर्तिदा, बिंदु गोप और मुखरा गोपी, और उसकी पित्री कौन हुई कीर्तिदा। और वहां पर महाभानु के 5 पुत्र थे, इसमें बीच में थे वृष भानु। जय वृष भानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय पूर्णमासी जय भीर नागरी, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, उस भजन में है जय वृषभानु बाबा की, कीर्तिदा मैया की जय। गर्ग आदि संहिता में उसके पूर्व जन्म का भी इतिहास बताया गया है, और वो पहले क्या थे तब की, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके शक्ति प्राप्त करने की इच्छा की प्रकट हुई, और भी ब्रह्म वैवर्त आदि पुराण और ब्रह्मांड पुराण की कथाओं के अंतर्गत भी इन दोनों का शुभ मंगल विवाह हुआ, तो पुत्र रत्न के लिए उन्होंने तप किया और फिर कात्यायनी व्रत और फिर प्राप्त हुई। लेकिन मुख्य रूप से श्री रूप गोस्वामी ललित माधव में पूर्णमासी जी के द्वारा जो कथा बताते हैं वो पूर्ण प्रामाणिक, और हम गौड़ीय वैष्णव के लिए श्रवणीय आदरणीय चिंतनीय मननीय है, और उसको भी हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग सुने हैं, लेकिन उसको छूते चलते हैं क्योंकि हमें लीला सुनानी है, लेकिन जन्म प्रकरण को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्योंकि कृष्ण नित्य किशोर है और राधिका नित्य किशोरी है, लेकिन कृष्ण भी बालक बने, ये भी बालक, बाल पौगन सब लीला हुई, स्वरूप से नित्य क्या है, किशोर है, लेकिन भौम वृंदावन में जब प्रकट होते हैं, अब राधा रानी क्यों प्रकट हुई पृथ्वी में, गोलोक वृंदावन से पृथ्वी पर क्यों आई, उसके भी कारण है, क्योंकि एक कारण तत्व से भी कृष्ण होंगे तो उनकी शक्ति, तो क्योंकि उनके बिना कृष्ण लीला नहीं करेंगे, लेकिन एक कारण है ना, वो ब्रह्म वैवर्त का श्राप मिला श्रीराम को और राधा रानी को, विरह और पृथ्वी पर आना पड़ा, ये सब है, लेकिन मुख्य रूप में गौण है ये सब। मूल बात है कृष्ण भूतल पर आना चाहते हैं तो अपनी शक्तियों को और उन्हीं के साथ लीला करें। तो ये सब कथा न बताते हुए, लेकिन इस जन्म प्रकरण को सुनते हुए पूर्णमासी जी ने कहा कि विंध्य नाम के पर्वत, हाँ, वो थोड़ा ईर्ष्या में आ गया, किससे, जाति ईर्ष्या होता है, पर्वत को पर्वत से ईर्ष्या होता है, तो एक पर्वत है हिमालय बहुत बड़ा है, तो विंध्य पर्वत को किससे ईर्ष्या हो गया, हिमालय पर्वत से, क्यों ईर्ष्या हो गया, बोले इसकी पुत्री है पार्वती और इसका पति है शंकर, और शंकर त्रिलोकी में पूजे जाते, महादेव कहलाते, तो जमाई बड़ा है तो ससुर भी फूल रहा है, इनको भी गर्व है कि हमारा जमाई शंकर है, भाई होता है ना, होना ही चाहिए, ससुर जी हिमालय जी अहंकार में फूले समा रहे हैं कि भाई हमारा जमाई कौन है, चंद्रमौली है, गिरीश चंद्रमौली शंकर है। तो ये विंध्य ने सोचा कि मैं भी कोई ऐसी पुत्री प्राप्त करूं और इसका विवाह ऐसे व्यक्ति से करूं और मेरा जो जमाई बने वो इस हिमालय के जमाई को भी हरा दे, तो मेरा भी नाम बनेगा कुछ, देखो कहां से कहां कनेक्शन जाता है। ऐसे विंध्य की हाइट बहुत ऊंची थी, ऐसा लिखा गया है कि वो झुका हुआ, अभी जो है ना वो झुका हुआ है, वो अगत, वो हाइट बढ़ रहा था, सूर्य चंद्र की गति को भी रोक रहा था, तो सबने वशिष्ठ को के अगत से कुछ प्रार्थना किया, अगस्त मुनि को, तो अगस्त बीच में आए तो उसने कहा प्रणाम ऋषिवर, झुका, तो उसने कहा झुका रहा है श्राद्ध, जैसे ही झुके तो खड़ा होकर डिस्टर्ब कर रहा था सब। तो विंध्य अभी बैंड है, नहीं तो बहुत बड़ा पर्वत था, इसलिए थोड़ा उसका था, और उसमें भी अभी इनको पुत्री नहीं है और इनकी पुत्री विवाह हो गया है उनका सब। तो उसने ब्रह्मा जी का तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रकट करके आशीर्वाद में मांगा, वरदान मांगने को कहा ब्रह्मा ने, तो उसने कहा कि मैं ऐसी कन्या, ऐसी पुत्र रत्न चाहता हूँ, पुत्री रत्न को, कि मेरा जो जमाई बने वो हिमालय के जमाई को भी युद्ध में हरा दे, शंकर को हराने वाला कोई है नहीं। और ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया, ठीक है ऐसा ही होगा, वो अपने घर चला गया, ब्रह्मा जी हंस के ऊपर या कमल के ऊपर जैसे भी प्रकट होके ब्रह्म लोक के जाके बाद सोचने लगी, मैं क्या बोल दिया, भूखा था, प्रसाद नहीं खाया था, उपवास था, इसलिए ऐसा हो गया। प्राय ऐसा होता है, हम बोलने के बाद सोचते हैं कि ऐसा क्यों बोला, पहले सोचना चाहिए ना क्या बोलना चाहिए तुमको, ये सब जगह गड़बड़, मैं ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा वरदान। और ब्रह्मा शिव जी को विष्णु कभी कभी कहते रहते कि थोड़ा हम जी अकारिन विचारिन वरदान देता रहे, और हिरण्यकशिपु को ऐसे ही तथास्तु कह दिया, क्या क्या हमको थंबे से निकलना पड़ा बिना बात के, थोड़ा संभल कर दिया करो, तथा तथास्तु बोलते रहो लेकिन थोड़ा दिमाग लगाया करो, ऐसे ही देते रहते हो। शिव जी उसको दे दिया वृकासुर को, तो वहां भी जाना पड़ा भगवान को, तो वहां पर भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से शिव जी से कि देखो आप लोग वरदान देते रहो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सोच के दो। तो बोले हमारे पास ऐसे ही लोग आते हैं क्या करें, अच्छे अच्छे तो सब आपके शरण में जाते हैं, ऐसे भेजा फ्राई वाले हमारे पास आते हैं, तो हमारा भी भेजा खाते हैं, अभी हम लोग भजन करें कि इनका, तो इसलिए इनको जो मांगे देके हम अपनी माला करते इनसे जान छुड़वाने के लिए, ये तो और डिस्टर्ब करेगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, बोल तो दिया लेकिन शंकर को हराए ऐसा कोई है ही नहीं, और ऐसा एक ही है शंकर जिसको पूजते हैं, स्वयं मम इष्ट देव रघु, वही शंकरषण भगवान विष्णु और उसके मूल तत्व कृष्ण के इतने प्रेमी है महादेव कि बंसी बजती है गोकुल में तो समाधि छोड़कर कैलाश को छोड़कर महादेव नंदीश्वर को भी अपॉइंटमेंट देते, तुझे दो बार ढीला है बूढ़ा हो गया ऐसे ही जाते, फास्ट पहुंचना है उसको। हम लोग उधर जाते ना हंसवाहन में मायापुर में, और शिव जी ने वो कथा सुनने के लिए उसका बैल, बैल बोले बहुत ढीला है, हंस दो तुम्हारा, ब्रह्मा जी का वाहन भाड़े पे लिया, और हंस फास्ट चलता, कोई कथा नहीं तो बैल पहुंचेगा तो कथा खत्म हो जाएगी, महाप्रसाद गोविंद होगा, हमारी तरह होता तो वही जाएंगे तभी पहुंचेंगे कथा खत्म होने तक। लेकिन श्री जी वो वैष्णवा नाम क्या है, यथाशंभु है, तो उसको तो ऐसे स्थान पर प्रथम उसी पहुंचना। और नंदलाला जन्म लिया तो भी दर्शन के लिए पहुंच गए जोगी बनकर, है ना शिव जी। तो कृष्ण के प्रेमी है, गोपेश्वर भी गोपी भी बन जाते, कोई अहंकार नहीं है। ललिता जी ने नारद को भी कहा कि गोपी बन जाओ, तो वे बोले गोपी बनाओ कुछ भी बनाओ, राज में ले जाओ, हमारी तरह नहीं, हम तो मूछ नहीं काटेंगे। तो राजदूत है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। कचरे मुंह के आगे कचरे क्या लगाना, बालों को कचरा कहा गया। एनीवे हम कहां से कहां चले जाते हैं, क्षमा करिए, लेकिन सब बोलना पड़ता है हमको, इसमें सब छुपा रहता है, क्या क्या शिक्षा मैसेज सब। तो शंकर भगवान प्रेमी है, सरल है, वैष्णव है, वो जानते हैं कृष्णा कृष्ण रास गोपी महिमा। और आपने सुना भी होगा कि वृंदावन में वास चाहिए, वृंदावन में एंट्री भी चाहिए, तो शिव जी गोपेश्वर की कृपा चाहिए। पैसा दे के टेम्पो करके गरीब रथ से आप पहुंच जाते हो ऐसा लगता है, लेकिन वो राधा रानी की सही होती है एंट्री होती है, शंकर भगवान की हाँ पड़ती है, तब आप उधर जा पाते हो। नहीं तो ऐसे बाहरी लगता है, लेकिन ये न कहने प्रकार है ना, इन वैष्णवों की कृपा है, वही व्यक्ति व्रज में जाता है, सत्य बात ये है, क्योंकि वहाँ सबका प्रवेश है। तो भगवान शंकर को कौन हरा सके, कृष्ण हरा सकते हैं, और कृष्ण प्रकट होंगे, उनकी प्रिया प्रकट हो तब ये काम बनेगा। लेकिन वो मेरे हाथ में है नहीं, ब्रह्मा बोले मैं सब विसर्ग सृष्टि करता हूँ, विधाता हूँ, लेकिन राधा कृष्ण का विधाता थोड़ी हूँ, वो मैं उनके वजह मुझे चलना पड़ता है। अभी क्या करूँ, अभी इसने मेरा तप किया, मैं उसका तप करता हूँ, और उसने फिर विश्वानुनंदिनी को प्रकट किया, उसका तप करके प्रकट करके कहा हे करुणामयी मैंने बोल दिया है, अब लाज रखना। और आपकी नित्य माता तो कीर्तिदा जी है, लेकिन आप थोड़ा जैसे कृष्ण भी करते रहते, ट्रांसफर करते रहते, संकर्षण करते रहते, इधर प्रकट होकर इधर जाते इधर जाते, ऐसे आप प्रकट थोड़ा इधर हो जाओ, फिर आ जाना बरसानो, विंध्या आपके लिए नहीं, आपका धाम नित्य बरसाना है, कीर्तिदा आपके नहीं, लेकिन थोड़ा मेरा वरदान का लाज रखने के लिए उधर वाया करो। हम कहते ना वाया डायरेक्ट नहीं, वाया करके आओ इस बार। तो प्रिया जी ने सुन लिया वर्मा जी की प्रार्थना का, ओके। और वही फिर शक्ति चंद्रावली के साथ जैसे आप जानते वही प्रकट हुई विंध्य पर्वत में, और यहाँ कृष्ण जन्म लिए, और योग माया कंस के हाथ से छूट गई, उसने कहा तुझे मारने वाला जन्म ले लिया है, और उसके साथ साथ उसकी 8 माँ शक्ति जन्म ली है, और वो इतरत कहीं है, और इससे जो शादी करेगा वो तेरा काल बनेगा। पूतना जो चाइल्ड किलिंग कमेटी की प्रेसिडेंट थी, उसको ईमेल किया कंस ने कि आओ तुम्हारा बहुत काम है यहाँ, सब मारना है। और वही पहुंची वहां, और उत्सव चल रहा था, उन दोनों कन्या को उठाई, सब रो रहे चिल्ला रहे, लेकिन ब्राह्मण थे उत्सव में, स्वस्ति वाचन करके उनको बोला मंत्र पढ़ो आसुरी शक्ति का विनाश हो, तो मंत्र का बहुत प्रभाव होता है, मंत्र परम लघुता सुबल, उनका मंत्र छोटा होता है बल बहुत होता है, उस देवता को आना पड़ता है। देखो छोटे मंत्र में भी छोटा बल होता है, हमारे पास तो महाप्रभु की और प्रभुपाद की कृपा से महामंत्र, हरे कृष्णा हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे।
इसलिए नियमित और अनुराग से जपिए, सर्व सिद्धि लाभ पा जाओगे हरि नाम के बल पर। बड़ा मंत्र है, भगवान प्रकट हो जाते हैं मंत्र के बल पर, जिसका भी मंत्र उसे प्रकट होना पड़ता है। असुरी शक्ति का पुतना विलास हुआ और वो ढीली हो गई, उनके हाथ में शक्ति गिर गई, विदर्भ में गिरी, फिर जामबंद के बाद चंद्रावली को लाया गया, लेकिन ये जो है ब्रज वृंदावन धाम में गिरी श्री राधा रानी। और रूप गोस्वामी पूर्णमासी की कथा में कहलवाते हैं ललित माधव में कि अंततः मुखरा जी को दिया इसने इस कन्या को, और आप इसकी कीर्ति दादी को दीजिए, इसका पालन पोषण, क्योंकि इसकी असली माता वही है। इन कथाओं से हमें क्या प्राप्त होता है कि जैसे हम पहले कथा बताए साथ में शॉर्ट में कि रावल में जमुना में स्नान कर रहे थे और कमल में बताना भूल गए, जैसे कमल में वो प्रकट हुई सुवर्ण वर्ण की कन्या, सहस्त्र दल सुवर्ण कमल उसमें, और नंद उसने उठाया विश्वभानु बाबा ने, और ऐसे अभी हम बोल रहे कि पूर्णमासी द्वारा पहुंचाई गई कल्प, वैसे जो भी हो, लेकिन कथाओं से एक बात हमें निश्चित पता चलती है कि जैसे कृष्ण का जन्म दिव्य है ऐसे इनका भी दिव्य यह योनि जा है। जैसे जड़ जगत में ये प्राकृत जन्म लेने वाले जीव देह में और कर्म बंधन, ऐसे इनका नहीं है, ये इतना तो समझ में आता है, लीला चाहे जो भी हो तत्व समझ में आता है कि भगवान की तरह इनकी शक्ति का जन्म भी दिव्य है। और इस तरह चाहे रावल में प्रागट्य मान्य है, चाहे यमुना में प्रागट्य मान्य है, उसको प्रकट होना है अपने प्रियतम की सेवा में, उनके आदेश आज्ञा में। और वो प्रकट हुई आज के शुभ दिन पर कृष्ण प्रेम भक्ति का भंडार लेकर, और कृष्ण प्रेम रस में सबको डुबाने के लिए श्री राधा रानी वृषभानु और कीर्तिदा जी के पास सामने आज के दिन मध्याह्न में प्रकट हुई। बोलिए श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम। कृष्ण भी हाथ खड़ा करके बोलते, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे, उनको भी मजा आता है। मेरी अभी मैं सुना ना आपने, राधा बोलते ही हो तो हिलने लगते, पूरा उसका सिस्टम फॉलो फ्लेल हो जाता है। एक और प्रेम से जय जय श्री राधे। तो श्री राधा रानी का मंगल में प्रादुर्भाव प्रागट्य हुआ, और कीर्तिदा जी के श्री गोदी में श्रीधाम बरसाना, जो ब्रह्मा जी ही पर्वत बने हैं कि लाडली जी हम पर चरण अर्पण करें, लीला करें। दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, विश्वभानुगढ़, चार चोटियां है। आज भी आप बरसानो जाइए, बृहत सानुपुर नाम है लेकिन बरसाना कहते हैं उनको। और राधा रानी का बाल लीला कुशोर सब वही हुआ, और ठाकुर जी भी ज़्यादा वहीं पड़े रहते थे, ससुराल नहीं जाना पड़े, इधर जागते ही नंद नंदन वही बरसाना की बॉर्डर में या बरसाना में गहवर वन में इधर उधर, उनको वहाँ प्रिया जहाँ है वहाँ जाना है उनको। तो बरसाना जोरस बरस रहो बरसाना, तीनों लोग वो कहीं नहीं। राधा कृष्ण की प्रेम स्थली से भरा है पवित्र धाम श्री बरसाना, क्योंकि राधा जी का धाम है। बोलो बरसाने वाली की। राधा रानी को बरसाने वाली कहते हैं, रस बरसाने वाली, प्रेम बरसाने वाली, भक्ति बरसाने, लेकिन रस रस की अधिष्ठात्री है, कृष्ण प्रिया है, राशेश्वरी है, रसेश्वरी है, निकुंजेश्वरी है, जो भी कहिए उनके लिए कम है। बहुत ही सुंदर तप्त, जैसे हम सुनते तप्त कांचन, तप्त सुवर्ण वर्ण उनका है, जैसे सुवर्ण की चंपक लता खिली हो ऐसा सुंदर मुखड़ा, चंद्रमा को भी लज्जित करने वाला, कोटि चंद्र सुशीतल कह सकते हैं राधा रानी के श्री मुख। अब क्या हुआ कि नंद बाबा, यशोदा सबको बुलाया गया, उत्सव करना पड़ेगा ना, राधा जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव भी हुआ था नंद, अभी हमने कुछ दिनों पहले मनाया नंद उत्सव। और नंद उत्सव जब हो रहा था ना, तो ऐसा वर्णन है कि नंद बाबा इतने आनंद में थे, इतना लुटाए, इतना दान दिए, इतना कृपा दिए, तो नारद जी भी ऊपर से देख रहे थे इनको, नंद उत्सव को। नारद जी नंद घेर आनंद भयो, नाच रहे गा रहे ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, नाचते नाचते उसको विचार आया कि नंद उत्सव ब्रज में वर्षा हो रही है आनंद की, रस की, लक्ष्मी की, मतलब इनकी आनंदायिनी श्री शक्ति भी कहीं ना कहीं प्रकट हुई, क्योंकि ये अकेले नहीं आते, अबे मन हकम कपल से आओ युगल है, तो कहीं भी जाते दोनों जाते हैं, मतलब कहीं हुई। नारद जी बुद्धि लगाए, त्रिकाल ज्ञानी है ना वो, तो लीला विलास मन है उनका, बोले कहीं तो प्रकट हुई होंगी, इसलिए ढूंढना है मुझे इसको, और इसमें लगेंगे 7-8 दिन। अब वो पहुंचे बरसाना, और वृषभानुपुर में गए। राजा वृषभानु ने बड़ा स्वागत सत्कार किया नारद जी का, प्रणाम पूजन अर्चन वंदन, फिर कहा कि साधु महाराज आप यहाँ प्रकट भये हो, हमारी बरसाना धन्य हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया, आपके श्री चरण से वैष्णव राज हो आप, हमारे यहाँ एक सुंदर लड़का जन्म लिया है और श्रीदाम को लेकर आए। बड़ा लड़का था श्रीदाम, किसका, वृषभानु बाबा, उसको नारद जी को गोदी में दिया, ये हमारे पुत्र रत्न है, आप इनको आशीर्वाद दीजिए। नारद जी जैसे ही उसको गोदी में लिए तो समझ गए, वो तो त्रिकाल के है ना, उनका सब कंप्यूटर चालू हो जाता है, बैटरी खुलने लगता है एक के बाद एक फाइल, ये कौन क्या क्या है, क्या करेगा, क्या है, सब सभी बिना वायरस के चलता है उनका कंप्यूटर, कहीं भी लाइट नहीं जाता कभी, नारद जी का फास्ट चलता है, रेम उसकी बहुत फास्ट है, तुरंत पकड़ता है कहीं भी। तो देख लिया सारा, तो कहा देखो वृषभानु बाबा, ये जो तुम्हारा लाला है ना, वो बड़ा सौभाग्यवान है, बड़ा पवित्र आत्मा है, कृष्ण बलराम का सखा बनेगा, इसका खूब लालन पालन करिए, ध्यान रखिएगा, ये सामान्य नहीं है, हम इसको क्या आशीर्वाद दें, हमको तो इनके आशीर्वाद लेने आना पड़ेगा, ऐसा है तुम्हारा लाला। अरे वाह, बाबा तो खुश हो गए, ठीक है आप संत के गोदी में गए, आशीर्वाद भी पाया, और भविष्य भी नारद जी ने बताया कि बड़ा अच्छा है इनका। और नारद जी कहे अच्छा हम चले, ठीक है महाराज पधारिए, एक मिनट रुक जाइए एक मिनट, हमको एक सुंदर देवी अप्सरा से भी सुंदर एक लाली भी प्राप्त हुई है। वो कहाँ है? नारद जी बोले इसी को तो मैं सर्च कर रहा हूँ, कहीं ढूंढ रहा हूँ, आप वही इसके लिए तो आया था। बोले कहाँ है वो? वो बोले ऊपर महल में है, लेकिन एक समस्या है साधु। क्या? वो अंध बधिर की तरह है, आंखें ही नहीं खोलती, एकदम सुंदर है लेकिन आंखें बंद है। नारद जी ने कहा हम देखना चाहते उसको। तो अभी विष्णु बाबा तो जाए उसके पहले ही नारद जी मनोगति से फास्ट फॉरवर्ड सीधा महल में घुस गए। उसके राधा रानी जहाँ पड़ी थी बाग, एकदम सुंदर सुवर्ण पलंग में ही सुवर्ण कमल खिला हो ऐसे, और जैसे ही नारद जी ने देखा, रूम में प्रवेश किया ना महल में, रोमांच कंपाश्रु, पूरा पवित्र राधा रानी के सानिध्य से ही नारद जी को रोमांच कंपा होने लगा। और जैसे ही नजदीक गए और उस कमल को देखा, उस बालकी को, इतनी सुंदर लाली नारद जी ने अपने विश्व रिकॉर्ड की अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तो वो तुरंत उसको लाइट हुआ, ये सामान्य नहीं है। और जैसे ही बोले इसको तो छूऊंगा अब, तो जैसे ही उसका स्पर्श किया और उसको देखने लगे, तो नारद जी सोचने लगे कि मैं गया हूँ स्वर्ग में, स्वर्ग में जाता रहता हूँ इंद्र, आप लोग को नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वापस नहीं आते, स्वर्ग जाना कोई नहीं चाहता, सब लिखना चाहते स्वर्ग वहां जाना नहीं है, नारद जी आ सकते इसलिए वो जाते, गए हूँ वहां, एक से एक अप्सरा देखी है छोटी मोटी बड़ी सब, लेकिन ऐसी सुंदरता कहीं नहीं। मैं हिमालय में भी गया हूं, उसकी लड़की पार्वती की बड़ी प्रशंसा सुनकर नारद जी गए थे, और उन्हीं के आशीर्वाद था वो तो, और वहां जाकर भी जब पार्वती को देखा था, लेकिन उनका रूप भी इनके रूप के आगे पानी भरता। इवन मैं वैकुंठ में लक्ष्मी को भी देखा हूं, लेकिन इनकी सुंदरता का सौवा हिस्सा भी लक्ष्मियों में, इन सारी शक्तियों की क्या कहे। हमने वो मोहिनी रूप भी देखा है जिसमें शिव जी मोहित हो गए, लेकिन वो मोहिनी में भी वो रूप नहीं है जो इस मधुरिमा इस मोहिनी में है। नारद जी ये सोचते भावी भर होते, जैसे ही हाथ में उठाया तो रोमांच था ना मूर्छित, रोमा अभी अभी कन्या भी कहाँ है, मैं भी कहाँ हूँ, कुछ बुद्धि नहीं सुधी नहीं रहेगा। और उसी समय क्या हुआ, राधा रानी 14 वर्ष की यौवन कुमारी हो गई, किशोरी हो गई, यौवन में तो जाती ही नहीं राधा, किशोरी है सॉरी, और उसके साथ ललिता विशाखा सब प्रकट हो गए, और सब प्रकट हो गए। नारद जी अभी तो मूर्छा में है समाधि में, उनको तो कोई तो स्तुति कर रहे थे देख रहे थे रूप, उसी में उनकी एक दशा हो गई। ललिता जी ने राधा रानी के चरण पाद पक्षालन को नारद जी पर छिटका, जागो महाराज आप लोग भी जागो अगर से नारद जी को सुधाए राधा रानी के चरण, फिर प्रार्थना कृष्ण के गुण गाने लगे, वर्णन करते करते तुम राधा रानी की बहुत महिमा है। नारद जी बोलने लगे कि सारा तत्व सारा शक्ति आपसे अधीन है, नंद नंदन भी आपके अधीन है, आप पूर्ण शक्ति है, सब गुणगान गाने लगे, सब शक्तियां भी आपके अधीन है। जैसे हम लोग राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में पढ़ते हैं, अनंत कोटि विष्णु लोक पद्म, अनंत कोटि विष्णु जिसके पद्म चरणों में अर्पित है, हिमाद्रिजा पुलोम जा विरंची जा वर प्रदे, ये हिमाद्रिजा हिमालय की कन्या चाहे पुलोम जा इंद्राणी ब्रह्माणी कुछ भी कोई भी हो, वो आपकी शक्ति से शक्ति अपार रिद्धि सिद्धि सतपदांगुली नखे, आपके श्री चरण कमल के नख में सारी सिद्धि रिद्धि सब पड़ी रहती है। कदा करिष्य हिमा कृपा कटाक्ष, हे राधा रानी कब मुझ पर कृपा कटाक्ष करोगी। नारद जी स्तुति कर रहे है, ललिता जी ने कहा बस महाराज बंद करो तुम्हारा गोविंदमादि पुरुषम, बहुत हो गया स्तुति, अब हम तुमको आशीर्वाद देती है कि तुम जाओ गोवर्धन के तट में, एक वन है उस अशोक वृक्ष के नीचे रहो, तुमको भी जब रास होगा सखी रूप में एंट्री मिल जाएगा, अभी 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 शांत धैर्य रखो। और इतना कह के ही राधा रानी पुनः जैसे थी बाल अवस्था में, मतलब किशोरी बन के राधा ने दिखा दिया कि मैं नित्य किशोरी, लेकिन ये मनुष्य लीला कर रही हूँ कि बाल बाल पौगंड सब करती, नित्य किशोर किशोरी है ये दोनों प्रेमी युगल हमारे। तो जैसे ही छोटी बन गई, अब राधा सब सखिया भी अदृश्य हो गई, तो नारद जी तो अब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं उसको सुला के। उसी समय विष्णु बाबा आए, अरे बाबा क्या कर रहे हो, हमारी छोटी सी बच्ची को आशीर्वाद देना कि प्रणाम कर रहे हो उसको, ये सब हो गया बाद में आए विष्णु बाबा कि नारद को बोले मैं तुमको आशीर्वाद देने भेजा हूं और तुम है कि उसको ही दंडवत झाड़ रहे हो। नारद जी ने कहा कि देखो बाबा तुम्हारी लाली इतनी सुंदर है कि हमको प्रणाम करने का मन हुआ, लेकिन क्यों प्रणाम किया वो तुमको बाद में पता चलेगा,
और मुझे भी अभी काम है, हरे कृष्ण कह के निकल गए फटाफट, नहीं तो बाबा सारा चित्र खोल देते, अभी इनको सच झूठ इनके सामने बोल नहीं सकते और सच बता नहीं सकते। नारद जी समस्या इसलिए बोले हरे कृष्ण हूँ जाऊ छू, मैं जाता हूँ तुरंत, क्योंकि इसमें फंसना नहीं है उनके। और फिर उत्सव हुआ तो नंद को बुलाया गया, यशोदा को बुलाया गया, नंद यशोदा आएंगे तो लाला को तो लाएंगे ही लाएंगे। और कीर्तिदा जी ने यशोदा का स्वागत किया, आइए महारानी जो पधारिए, और कीर्तिदा और दोनों वंशा कल्पत मिले तो लाला गोदी से उतर के धीरे धीरे पलने की ओर जहाँ प्रिया जी सोई, क्योंकि उन तो इन्हीं के लिए आए थे ना। और यशोदा और दोनों बातों में लग गई, गैया का क्या हाल है और खेती कैसे होता है, मक्खन कैसे होता है, और ये चले अपने पास, ये दोनों अपनी बातों में। और जहाँ सोई थी पलने में प्रिया जी, वहाँ जाके पलना पकड़ के, ये भी घटवन घटवन चलते हैं, वो भी पूरा तो चल नहीं पाते थे, तो वहाँ जाके पकड़ा उसको, उस पलने को, और जैसे ही देखा, और देखने के बाद उसको छूना है अभी, जैसे ही कर कमल हाथ आगे बढ़ाया, स्पर्श पाते ही राजा रानी ने कमल खिलता है ऐसे आँखें खोल दी अपने, क्योंकि उन्होंने निश्चय किया था कि पहले किसको देखेगी, हमारे प्रियतम को, इसलिए आंखें बंद। कृष्ण को देखते छूते ही राजा रानी ने क्या कर दिया, आंखें खोल दी, और कृष्ण खिलखिलाते हंसने लगे, और इस थोड़ी सी हल्की सी आवाज से, अरे कृष्ण कहाँ गया, नंद यशोदा ने कहा, तो बोला अभी यही खिलता हो गया। तो दोनों महल में गए, तो ये दोनों युगल छोटे छोटे, उठाया यशोदा ने कन्हैया को, और कीर्तिदा जी देखो ये हमारी लाली है, जैसे देखने की आंखें खिली, अरे बाबा हमारी लड़की की आंख खुल गई, तुम्हारो लाला कहीं जादूगर है क्या, चमत्कारी बाबा क्या है पता नहीं, इनको देखते छूते ही जो हम लोग दुखी थे चिंता, और उसने उठा लिया झूम थे, क्योंकि वो तो बरम पर जिस माँ को कितना सुख होगा कि इतनी सुंदर थी लेकिन आंखें बंद थी अब खुल गई, और दोनों लेकर बाहर आए जहां पर ये लोग बैठे थे, नंद या वृषभानु बाबा, और देखो कीर्तिदा जी बता रही हमारी लाल की आंखें खुल गई, वो तो सब आनंद उत्सव डबल होगा। अब क्या हुआ, जो गोद में लिया था कन्हैया को यशोदा ने, वो दोनों बैठ गए अपने अपने स्थान पर, तो इसने कहा तुम्हारी लाली तो बड़ी सुंदर है, कन्हैया को नीचे छोड़ के यशोदा ने राधा रानी को उठाया। ऐसे होता है, आप ये व्यवहार है, हम कहीं जाते हैं तो बीजान छोकरा नो गमते हैं तो रमड़वा पड़े तो गमते लेकिन यहाँ तो लीला है, लेकिन मैं अपनी बात बता ये सब व्यवहार होता है कि जहाँ आते जाए अपना बच्चे, वो तो राधा वहां तो महारानी जो, तो ऐसे तो राधा वास्तव में सुंदर, तो उनको उठाया गोद में रखा, तो लाला देखते हैं हमारा शेर सर्किट डाउन, इनको आते ही उनको उठा लिया, उनको नीचे फेंक दिया इसको, तो अभी क्या करेंगे, हम भी ट्राई करते, फिर माता का छोटे छोटे फिर खड़ा होके, क्योंकि पकड़ के खड़े तो हो सकते, मुझे भी बैठना ये भाव दिखा रहे, तो इस गोदी में राधा को बिठाया, और इधर आ जा बेटा तू भी आ जा। तो कीर्तिदा तुम क्या कह रही थी, बातों में लग गए ये दोनों अपने चक्कर में, इन लोगों को पता ही नहीं, ये लोग समझ रहे कि छोटे हैं लेकिन इनको पता नहीं है सबसे बड़े हैं ये दोनों। तो वहीं से पूर्व चालू हुआ प्रेम मिलन प्रथम, उस वृषभानुपुर से ही, क्योंकि लालो पहले ही पहुंच गया उधर, बुक करा दिया, रिजर्व कर दिया सब स्थान। राधा रानी ऐसे तो ये सनातन प्रेमी युगल है, लेकिन लीला में ऐसे मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो भी हमारे पूर्वराग पूर्वानुराग कहते हैं उसको संस्कृत में, हमारे आचार्य वर्णन करते हैं गोविंद लीलामृत में, कि वो ऐसा लगता है कि मानो दोनों मिलते हैं, घंटों भर मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं फिर भी मानते हैं कि कब हूं मिले ना, ऐसा ही लगता है कि अभी हम, तृष्णा बढ़ती रहती है ये प्रिया प्रियतम के मिलन में, और फिर यही प्लान चलता है। जैसे कृष्ण थोड़ा बड़े हुए और गोचारण गचरने के लिए गए, और सभी सखाओं के साथ ग्वाल बालों को लेकर कहाँ गोचारण करते थे, यमुना तीरा वनचारी, यमुना के तट पर, तो वहीं से कृष्ण भगवान निकल गए, और वहां पर राधा रानी जल भरने के आदि ललिता विशा के साथ यमुना तट पर, वहां से वो अकेले निकल गई वन में। और जब दोनों का मिलन हुआ मधुवन में, तब वर्णन है कि गोरी सी भोरी सी एकदम छोटी सी हमारी वृषभानु नंदिनी, कृष्ण ने जब पहली बार उसको देखा तो एक तो तप्त सुवर्ण वर्ण चंद्रमा को भिखा कर ऐसा, और उसमें नीली साड़ी पहनी थी, सारे आभूषण पहने थे, राजकुमारी है ना, वृषभानु की लड़की है, वृषभानु राजा है। तो कृष्ण उसके पास जाके कहते हैं कि क्या गानना छे, कहो धाम, आपका धाम कौन सा है, तो राधा रानी कहते हैं बरसाने वाली, राधा रानी कहती है बरसाना धाम की, तो राधा रानी प्रेम से कहती है वीणा, जैसे वीणा बजती है ना मधुर, उसको भी निंदित करे ऐसे मधुर शब्द में प्रेम शब्द में राधा रानी बोली बरसाने से है हम। तो कृष्ण फिर पूछते कि बरसाने में किसकी लड़की हो, तो कहते हमारे बाबा राजा हैं, हम अपने मुख से अपने बाबा का नाम नहीं लेते, लेकिन इनका नाम बैल से और सूर्य से चालू होता है। बैल मतलब वृष, वर्षति कामानि इति वृष, वृष मतलब धर्म और सूर्य मतलब भानु, वृष। तो ऐसे हम डायरेक्ट नाम नहीं लेते हमारे बाबा का, लेकिन उसका नाम बैल से और सूर्य से चालू होता है। तो नंद कृष्ण ने कहा अच्छा तो तुम वृषभानु बाबा की लड़की, तुम्हारा नाम राधा है ना, वाह नाटक भाई तुम्हारा नाम राधा है ना। तो राधा रानी तो एकदम कृष्ण के मुख से अपना नाम सुनकर अंदर से बहुत रोमांच होने लगा, लेकिन अपने आप को पकड़ के रखी, बोल बाहर प्रदर्शन नहीं किया। राधा रानी ने कहा अरे तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। कृष्ण ने कहा तुम्हारे नाम और तुम्हारे रूप की तो 84 को उसमें पर्चा चलती है, हम तो तुम्हारे सलाह किसी का नाम ही नहीं सुनते। कई दिनों से इच्छा थी तुमको देखने की, आज विधाता ने कृपा की कि आपके दर्शन हो गए। अब राधा रानी तो और क्योंकि ऐसे ही आनंद था उनको देखे ही, क्योंकि राधा रानी ने भी नाम सुना था कृष्ण का। तो कृष्ण नाम सुनते ही उनके कान में गया ना, उनके चित्त व्याकुल हो जाता था, जैसे चंडीदास ने गाया है ना, कानेर भीतर गया हृदय मरम पशिल गो व्याकुल करिल मोर प्राण। कृष्ण नाम में वो मधु है कि राधा रानी विह्वल हो जाती थी, रोमांच हो जाता था, और ऊपर से जब कृष्ण वेणु बजाते थे तो राधा रानी बरसाने में सुनती थी तो उसको लगता था कि कितना मधुर वेणु है। जैसे लोभी भंवरा कमल को छोड़ना ही नहीं चाहता, ऐसे मेरा मन रूपी भंवर उस बंसी को छोड़ना ही नहीं चाहता, सुनना ही चाहता। तब तक तो चित्रा सखी ने आकर फोटो दिखाया, कृष्ण का चित्र बनाया, देखो सखी एक नंद नंदन यहाँ ब्रज में है, कितना सुंदर है। तो उसमें भी मन आ गया। राधा रानी ने ललिता को कहा ललिता मैं मर जाऊं अभी, क्यों, क्योंकि मेरा मन तीन पुरुषों में जा रहा है, कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है उसमें जा रहा, जिसकी बंसी सुन रही उसमें भी जा रहा, और जिसका चित्र देखा उसमें भी जा रहा। ललिता ने कहा चिंता मत करो ये 3-in-1 है वही है जिसका नाम तुम सुनी, जिसकी तुम बेणो सुनी, जिसका तुम चित्र देखी, वो क्या है त्रिभंग ललित वही है। तो ऐसे सुनी थी कृष्ण के। राधा रानी को जब कृष्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारी चर्चा ब्रज में सुनी है इसलिए मैं तुमको जानता हूं, तो राधा रानी ने पूछा अच्छा तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो इसने कहा मेरा नाम कृष्ण है और मैं नंद राय का लड़का हूं। तो राधा रानी कृष्ण सुनते ही वही विकार आने लगा, अब तो प्रेम उफान ले रहा है, प्रेम समुद्र की तरंग हिलोर ले रही है ही हमें, लेकिन अब रोकना है उनको। तो उसी बेचैनी में घबराहट में राधा रानी क्या बोली, कृष्ण बड़े चोर है। तो बोलना नहीं चाहती लेकिन निकल गया कि जैसे नंदलाल ने कहा कि मेरा नाम कृष्ण है तो ऐसे भाव प्रकट हुआ, लेकिन राधा रानी बेचैनी में बोल दी हाँ कृष्ण तो बड़े चोर है। तो कृष्ण थोड़ा अरे बड़े घर की लेकर लड़की होकर इतनी बड़ी बुरी बात बोल दी, मैंने तुम्हारा क्या चुराया, मैंने तुम्हारा क्या चुराया, तुम्हारे बाप का क्या चुराया, मेरे को चोर क्यों बोला। अभी देखो क्योंकि बात भी सही है, पहले ही मुलाकात इतनी सज्जनशाली में रही और राधा रानी के मुंह से निकल गया बाप रे, वो ऐसे भी सोच रही है। लेकिन कृष्ण बोलते मैंने तुम्हारा क्या चुराया, चोर क्यों बोला हमको। राधा रानी कहा नहीं नहीं ऐसे ही बस हमने सुना था तो निकल गया। अच्छा हम जाती है। कृष्ण ने कहा बाप रे, तो रंग में भंग हो गए, नाराज हो गए। ए सुनो सुनो मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे मैं चोरी कभी कभी करता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कोई बात नहीं, तुमने भी कोई गलत नहीं बोला है, लेकिन मैं चोर हूं नहीं, मैं अपने लिए चोरी नहीं करता, वो तो बंदरों के लिए हमारे सखाओं के लिए, वो भी छोटा सा माखन चुराता हूँ, सुवर्ण अलंकार कभी नहीं चुराया, वो माखन वो थोड़ा खाने के लिए। तो ठीक है आपने बोल दिया तो कोई, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर चोराग्रगण। तो अंदर से अभी कह रही कि सॉरी मैंने आपको चोर बोल दिया, अंदर से बाहर से बोल रही है, लेकिन अंदर से राधा रानी सोच रही है चोर तो तू है क्योंकि पहले ही नजर में हमारा चीज चुरा लिया तुमने, अभी पूछ रहा है कि तू मेरा क्या चुरा है, मेरा रहने क्या दिया तुमने, लेकिन अभी बोलना नहीं है क्योंकि नहीं तो बात आगे बढ़ेगी गड़बड़ हो जाएगी। कन्हैया ने कहा कि देखो देखो सुनो अभी सुंदर वातावरण है, चलो यमुना में थोड़ा यमुना तट पर थोड़ा घूमते वॉकिंग करते। ए नहीं बाबा मुझे जाना है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, माँ को जवाब देना पड़ता है, बहुत समय हो गया, मैं जाती हूँ। जैसे ही जाती हूँ ऐसे कहा तो कृष्ण ने सोचा ये तो गई, अब बोला सुनो सुनो एक बात तो सुनो, कल कब मिलोगी ये तो बता दीजिए, किस समय मिलेंगे। कुछ नहीं मिलेंगे, तुम्हारी तरह मैं नहीं हूं, सब बहाना बनाना पड़ता है, माता को समझाना पड़ता है, समय होगा तो देखेंगे। कृष्ण ने कहा बहाना हमसे सीखो, गुरु है हम। देखो तुम्हारे पिता की गौशाला है ना, उसके बाजू में मेरे पिता की गौशाला है, मैया को कह देना कि गाय दोहने जाती हूँ खिरक में, फिर हम लोग दोनों साथ में दोहेंगे गाय, क्या चिंता है। और दोहे भी है, बरसाने में लीला है, पिए को दुहन सिखावत राधा प्यारी, राधा जी सिखाती है और कृष्ण को, और राधा रानी फिर कृष्ण की गाय के हाथ को सीधी अभिषेक सीधा ही करते हैं राधा रानी का, जैसे हम करेंगे ना, वो गाय के दूध का डायरेक्ट अभिषेक, और ऐसे ही चंद्रमा जैसा मुंह के ऊपर से और धवल हो गया राधा रानी का, और सारी सखियां ताली पीटती, तो ऐसी लीला हुई है। तो कृष्ण ने कहा ऐसे बना देना, तो राधा रानी कहते बस सिखाने की जरूरत नहीं, और हम सब जानती है, क्योंकि अल्टीमेट तो यही सिखाएगी सब कुछ, सकती है ना। ठीक है अब हम जाती है, तब तक कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया और जो नीली साड़ी थी ना चुनरी वो खींच ली। रुको कल कब बताओगी ये कह के जाओ तो छोड़ोगा। और जैसे ही साड़ी सर की तो यहां से काली नागिन सी चोटी फिर गई उसकी, राधा रानी की सुंदरता में और चार चांद लग गए प्रिया जी के मुख पर, जैसे बादल की घटा में चंद्र निकल गया हो ऐसे ही राधा रानी का मुख कमल। कृष्ण ऐसे अपने आप को संभाले हुए मूर्छित नहीं हो रहे, यही सौभाग्य है इसको देखकर। तब राधा जी ने सोचा कि ये बड़ा बोलता मधुर है लेकिन है ढीठ नटखट, छोड़ेगा नहीं ऐसे कुछ तो बोलने का। मैंने कहा कि देखो मैं पूर्ण प्रयास करूंगी लेकिन अभी तुम छोड़ो। और ऐसे ही बात बोल रही है उसी समय कृष्ण ने चुनरी निकाल ली और अपना पीताम्बर डाल दिया। राधा रानी बात कर रही है लेकिन वो सुधी नहीं रही उसकी, हो गया अरे छोड़ो हमको जाना, ऐसा कर कर चली पीताम्बर लेके चल। और श्याम सुंदर वो हरी प्रिया की वस्तु है, बहुत प्रेम करते हैं, महबूब की हर चीज महबूब होती है कवि ने कहा है। तो राधा रानी की चुनरी है भाई, तो अभी उसको सर से लगाए जा रहे, पहुंच गए यशोदा जी ने कहा अरे लाला ये नीला पीला नीला कैसे हो गया, कहां पे रंग लाल के आया तू, तू छोरा है कि छोरी है, ये छोरी का वस्त्र समझ में आता है, कैसे पकड़ के लाया। अरे मैया क्या हुआ जानती हो, क्या हुआ बता। अरे हमारी जो गाय है ना वो मरकनी गाय, वो बहुत सींग उछालती रहती है, वो आज खिले खूंटे से छूट गई और सींग उछालती हुई रास्ते में दौड़ गई, मैं उसके पीछे पकड़ने दौड़ा तो एक सखी जा रही थी नीली चुनरी ओढ़े, उस पवन में चुनरी लहरा रही, गाय की सींग में अटक गई, चुनरी गाय लेकर भाग गई और ये बेचारी ऐसे ही लाज रही। तो मैंने सोचा स्त्रियों की लाज बचाना मेरा धर्म है, धर्म संस्थापनार्थ है, तो मैंने अपना पीताम्बर उस पर डाल दिया और मैं तुम्हारा लाला हूं, बहुत माखन खाया हूं, छोड़ूंगा मैं इस गाय के पीछे भागा, पकड़ा चुनरी लेकर जब मैं वापस गया तो सखी गायब। लेकिन मैया चिंता मत कर मैं उसको जानता हूं, मैं कल जाऊंगा ये चुनरी दे आऊंगा, पीताम्बर ले आऊंगा, खाना दे मेरे को। यशोदा जी ने कहा लाला देखो पीताम्बर छोरी पे कैसे गया तो गया, हमारे पास पीताम्बर की कमी, ये चुनरी तू दे आना लेकिन पीताम्बर मत लाना क्योंकि स्त्री का स्पर्श हो गया उसको छोड़ दो, तुमको मैं नया पीताम्बर देती हूँ ठीक है, लेकिन वो पीताम्बर लाने की जरूरत ठीक है मैया, चलो नया दे दो अभी माखन दे दो। खाना खा के माखन फ्रेश होकर खाने बैठे, उधर कीर्तिदा जी के महल में राधा रानी पहुंची। कीर्तिदा जी ने कहा क्रोध में, अरे लाली कहां गई थी इतने समय से, सुबह से शाम हो गई पता नहीं चलता है, ललिता जी वशिका से पूछा वो भी मोबाइल नहीं उठा रही है, तुम्हारा मिस कॉल व्हाट्सएप भी बंद है, सब बंद है, मैं कितनी चिंता में हूं, पहली बार तू गई है। और इस तरह माँ होती है लड़की बाहर हो जाए तो टेंशन तो होता ही है ना कि क्या कर रही है तुम इतना कैसे हो गया। राधा रानी थोड़ा भय में, मैया मेरी बात सुनेगी कि तो तू डांटती ही रहेगी। अरे नहीं देखो लाज शर्म होना चाहिए, हम बड़े घराने के हैं, सब पूछते हैं, सब देखते रहते, सबकी नजर होती है इसलिए मुझे पूछना पड़ता है। तब तक देखा अरे ये पीला कैसे हो गया, क्योंकि राधा रानी को भी पता नहीं हो, तब देख रहे बाप रे ये वो काला जादू चलाया। बोले तुम्हारा मैं तो नीली साड़ी पहन के गई थी ना, हाँ 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 मैया पीला कैसे हो गया। अब ये भी बात बना रही, देखो मैया तू बात सुन तो मैं बताऊं, मैं गई गौशाला में तो वहां कोई नौकर ठीक से काम ही नहीं कर रहा, तो मैंने गाय दोही और सब साफ किया तो फिर कपड़े खराब हो गए अंग की, तो मैं यमुना जी में नहाने गई, यमुना जी में कपड़े उतार के नहाने गई, चुनरी निकाल जैसे नहाकर बाहर आई तो एक काला सर्प है पानी में। अब सांप देखी तो डर लगता है ना, मैया भी सुनते सुनते अरे बापरे फिर क्या हुआ, वो भी उनका क्रोध चला गया, भय आ गया, भय भाव आ गया, क्रुद्र रोध भाव चला गया मैया का भी। तो क्या हुआ, हमारी सखी, मैं तो अपना वस्त्र पहन रही थी तब तक वो काला सर्प हमारी सखी को डस लिया, एक गोपी को डस के चला गया। और उसको संभालने में गई तो मेरी चुनरी यमुना जी में बह गई, और मैं तो उस गोपी को देख रही हूं। तब तक तो एक छोटा सा लाला आया, इतना सुंदर था, इतना जादू, वो पास आकर उस कान में क्या मंत्र फूका, वो सखी जाग गई, सारा विष उतर गया। और उसने जब मुझे देखा, मैं उस सखी को संभाले हुई थी, बोले ऐसे नहीं रहना चाहिए, अपना पीताम्बर उसने मुझ पे डाल दिया। राधा रानी बात बना रही कीर्तिदास। तो फिर इस तरह पीताम्बर मैंने कहा कि मैं कल दे दूंगी, तो मैं पोड़ के आ गई। तो ललिता जी, कीर्तिदास जी ने छीने से लगा लिया राधा रानी को, अच्छा हुआ सांप तेरे को नहीं काटा, इनको काटा है। और लेकिन को पता नहीं, लेकिन बोला अच्छा है तेरे को नहीं काटा, हाय मेरी लाली बच गई तू, मैं इसलिए तुमको मना करती हूँ, वन में मत जाओ, यमुना तट पे मत जाओ, हमारे सेवकों को आज्ञा दे दो ये सारे काम के लिए। ठीक है मैया, अब नहीं जाऊंगी। लेकिन एक जब देखा कि कीर्तिदा नॉर्मल हो गई है, तो राधा रानी ने हल्के से पूछा, मैया वो छोरा कौन होगा, बड़ा सुंदर था। तो पीताम्बर देखी तो कीर्तिदा जी ने कहा कि ये, और उसने मंत्र जाड़ा तो वो प्रसन्न हो गई ना। तो कीर्ति का कमाल पता था, नंदनंदन का, विष पुतना का भी उसको कुछ नहीं होता। तो उसने कहा कि वो तो हमारे नंद राय का, यशोदा का प्राण प्यारा नंदलाल होगा, उसका नाम कृष्ण है। अच्छा कृष्ण है, हाँ उसका ही ये पीताम्बर है, अभी सही बात बता रही है लेकिन घुमा के। तो अब क्या करूं मैया, बोले देखो कल है ना ये पीताम्बर, उसको दे आना, ठीक है, क्योंकि रखना नहीं चाहिए। और मैया तो फिर मैं कल उसके घर जा सकती, हाँ वो तो हमारा ही घर है। कीर्तिदा जी कहती, वो तो हमारी सखी यशोदा का घर है, तू एनी टाइम कभी भी उसके घर, आप परमिशन ग्रांटेड, जो काम चाहिए था वो हो रहा है इधर, इसलिए अभी अभी कोई चिंता नहीं है। अब जैसे ही अभी देखो, एक बार वृंद में मिलन हुआ और फिर बिछड़ हुआ, अब दूसरे दिन दोनों का एक ही काम, नेट में कहां मिलोगी, फेसबुक पा, 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 पा। उस समय ये नहीं था, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि एक ही प्लान, कहां मिलेंगे, कहां, और पूर्णमासी, ये सबका एक ही प्लान, इसको कैसे मिला। सारी सखियां गाय का दूध करके गोरस लेकर भी बेचने जाती है, जैसे ललिता विशाखा सुबह सुबह बरसाने में इकट्ठी होती है और कहती चलो सखी दही बेचने जाएंगे, तो दूसरी कहती हम जाए तो सही, लेकिन नंद नंदन को मुख नहीं देखो, ताबिनो हमें चैन ना आवे। तो सखी उनका दर्शन हो जाता तब दूध दही बेचने में आनंद आए। तो ललिता जी कहती है कि यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, चलो दही बेचने जाते, उसी बीच में नंदराय भी मिल जाए, नंदलाला भी मिल जाए, तो है ना, गोरस बेचक हरी मिले, एक पंथ दोई दोई काम हो जाएंगे। तो किसी ने कहा कीर्तिदा की लाली से भी पूछ लेते, प्रियाजू दध दुई बेचने आप भी चलोगी, उस बाने श्याम सुंदर के दर्शन है जाएगो। तब उसने कीर्तिदा जी की लाली ने कहा कि देखो सखीजू, हम तो चाहती है कि नंदलाल के दर्शन हो, लेकिन लोकलाज को भय लगो है तो आ नहीं पाएगी। अरे लोकलाज से मरेगी तो बिना दर्शन की रहेगी, दूध दही की मटकी उठाइयो और चलियो हमारे साथ। राधा ने कहा तब तुम बोलती हो तो चलो आ जाती, मटकी उठाया और सभी गोपियां इकट्ठी होकर जा रही है, दही दूध बेचत चली चली मटहरा गांव, गांव में गजारी, मटहरा एक गांव है गोवर्धन के पास। लेकिन प्रेम नंद नंदन से भरो, अंदर तो नंद नंदन को ढूंढ रही है लेकिन बाहर से अपना नखरा दिखा रही, झटका दिखा रही, क्रोध दिखा रही, सब कर रही है। लेकिन उस दिन हुआ क्या मालूम है कि घर घर दधी बेचत फिरत को न बुझन बात, घर घर फेंच रही है लेकिन बात नहीं बनी, न दही बिक्यो न हरी मिल्यो, ना तो दही बिका ना नंद अंदर का दर्शन हुआ, पीड़ कलेजे मात, हृदय में पीड़ा है, दही भी नहीं बेच रहा बिक रहा है। और सभी सखिया गांव से बाहर आकर इकट्ठी हुई, अरे सखी आ गांव में तो दूध दही को कोनो ही ग्राहक नहीं, अब क्या करे। दूसरी कहती है पता नहीं सुबह सुबह किसको मुंह देखन से चली, सगुन बराबर नहीं लियो। तो तीसरी ने कहा कि जा दिन नंद नंदन हमारी मटुकिया सो माखन निकाल के ना खावे, तादिन ऐसी दशा होवे, तब ऐसी दशा होगी जब तक नहीं खाएगा। जिस दिन नंद नंदन हमारा मटके से कुछ खावे, हाथ के हाथ बिक जाए, उसी समय सौदा हो जाता, सब बिक जाता। पर अब क्या करे भाई, सो अब सांझ हो ही रही है, तो चलो वापस रिटर्न। सभी सखियां बात करके बोले चल के जाएगी, देर होगी, चलो यमुना तट पर कोई नाविक मिल जाए तो नाव में ही पार होके चली जाएगी। और राधा रानी उस यमुना के तट पर शिला पर चढ़ी, कोई नाव नहीं दिख रही उनको। सखी जो कोई नाव नहीं है, तुम नीचे बैठ जाओ, दूसरी सखी चढ़ी। लेकिन राधा रानी शिला पर चढ़ी तो कवि ने लिखा है कि मानो बिजली मेरु पर चढ़ी हो, क्योंकि राधा रानी तब तो सुवर्ण बिजली है और ऐसी चमक रही है उनका सुवर्ण शरीर। लेकिन वो थक के बैठ गई, तो दूसरी सखी देखी, अरे एक नाव दिख रही है हमको, नाव से भी उसमें नाविक तो बड़ा सुंदर दिख रहा, वो कोई और नहीं था, हमारे गिरधारी बंसी को छुपा दिए और केवट मल्ला का रूप लेकर नाव खेवते हुए भजन गाते हुए आ रहे, क्योंकि नाविक का काम है भजन गाना। वो गा रहे थे, प्रेम नगर की डगर कठिन है, ये प्रेम नगरी की जो चाल है ना वो बड़ी कठिन है, संभल के रखियो पांव, ऐसे वो अपनी भाषा में गा रहे थे। ये तन है टूटी नावरिया प्राणी, ये तन क्या है, टूटा हुआ नाव, नाव में जैसे छेद होता है हमारे शरीर में क्या है, द्वार है ना, ये तन है टूटी नावरिया प्राणी, इसमें मत भरियो पाप का पानी। नंदनंदन गा रहे हो अपने मूड में और सखिया सुन रही है, तो ये भजन गाने वाला है कि धंधा करने वाला है, समझ नहीं आता। और नंदनंदन गा रहे, केवट संभाल के चली हो माया भंवर के बीच, क्योंकि माया रूपी भंवर आता है ना, वो अपने स्टाइल में बड़ा सिद्धांतिक बात कर रहे हैं नंदनंदन। और गाते हुए आ रहे हैं कि प्रेम की नगर बड़ी कठोर कठिन, संभल के रखियो पांव, ये प्रेम पुजारी स्वयं है ना, सब जानते हैं। अरे ओ नाविक इधर आ जाओ, ललिता लक्ष्मी ने कहा, तो राधा रानी ने कहा वहां कोई बुलाई लो, जल्दी बुलाई लो, बेगी बुलाओ उसको। और जैसे ही नंदनंदन नजीक आए तो अपनी नाव को किनारे लगाए, थोड़ा यहाँ घुटना तक पानी हो, वहां तक लंगर डालना पड़ता ना इन लोगों के, नजदीक लाए और कहा कि देखो तुम धंधा करने आए हो कि भजन गाने आए हो। बोले दोनों दोनों होता है, तो गाना बंद करो, हमको बिठाओ, हमको उस पर पहुंचाओ, देर हो गई, हमको कुछ जाना है। तो नंदनंदन सबको देख रहे कि बाप रे हमारी नई नई नावरिया और तुम भूषण भारी गुजरिया, बरसाने वाली लगती हो, माखन दूध दही का कमाल लगता है, सब हटे के बढ़िया थी सब सुंदर, ए तुम हमारा रूप प्रदर्शन बंद करो, तुम नाव खोलो, हमको बिठाओ चलाओ। मैंने कहा देखो सखिया, हम लोग भूखे हैं, भूखो माना से कोई काम होवे ना, तो पहले नाश्ता करेगो, लंच करेगो, फिर चलेगो। अरे तुम बीच में कर लेना, और खाने के लिए हमारे पास बहुत सामग्री है, सारा मटका, क्योंकि कुछ बिका ही नहीं था तो सब भरा है, तुमको अंदर ही हम डिनर लंच जो भी करना है करा देंगे, तुम जल्दी बिठाओ हमको चलाओ। तो ठीक है, तो एक एक करके आई जाइयो, सब एक एक को पहुंचाऊंगा। अरे एक एक को नहीं, हम एक, तुम तरुण नवयुवान हो, हम भी नवयुवान, एक एक में गड़बड़ है। तो कन्हैया ने कहा दे दे चली, दो दो चलते, दो दो नहीं, हम सब साथ में चलेगी। कन्हैया ने कहा साथ में चलोगी तो नाव डूबेगी, भार नहीं वजन होगा, और डूबोगी तो मरोगी, और हम मल्ला को क्या, एक लंगोटी है, भीग जाएगी, सुखा देंगे, तर के चले जाएंगे वापस, और तुमको कौन बचाएगा। अरे बात तो सखी सही कह रहा हूं, तो अब करें क्या। और उसी समय नंद नंदन ने प्लान किया है, जैसे ही सखिया को चढ़ाया, बोले चलो डूबोगे तो मेरी बात नहीं बोलना, अरे तुम चलो बस। जैसे ही नाव में बिठाया, पहले आपने बोला था कि नाश्ता होगा, ये लो मटू की खाओ। तब तक तो देखा कन्हैया ने, ये सखी बड़ी चमक रही है, कौन है ये, छुप रहो इसके बारे में, ये हमारी राधा रानी है, प्रिया जो है राधा रानी है, छुप रहो इसके बारे में, बड़ी सुंदर है तुम्हारी, चलो हमको खाना दो। तब वो कहते हैं देखो जी, राधा रानी को कृष्ण कहते हैं कि तुमने नीली साड़ी पहनी है तो ऐसा लग रहा है कि कोई नीला पर्वत बैठा हो, सब के बैठी थी राधा, और कहीं वायु को भ्रम है गयो कि ये पर्वत है, बादल है, सॉरी बादल है नीला, तो चक्कर से आएगो उठाएगो मेरी नाव को भी गुआए डुआएगो, इसलिए आप श्वेत वस्त्र डाल ले अपने सर पर। तो राजा रानी ने कहा तुम मेरी बात कर रहा, तेरा तो पूरा शरीर नीला है, तू तो पर्वत लग रहा है, मैं तो बादल लग रही हूँ, लेकिन तू क्या रहा? और इसी बहाने पवन आ गया तो उठाएगा ना, तो हम सबके राजे राजे हो जाएंगे। इसीलिए काम कर, श्वेत तू बन जा, हमारे पास दूध दही बहुत है, उसको थोड़ा अभिषेक कर ले तो थोड़ा गोरा बन जाएगा तू, तब तक रहेगा तब तक, तेरा अभिषेक दूध दही से तू कर ले। तब क्या कृष्ण ने कहा कि चलो नहाने की बात नहीं है, गोरस तो पीवन को बात है और माखन खाइन को बात है, खाने पीने की बात है, लाओ थोड़ा थोड़ा खा लेते, ये लो खाओ और जल्दी चलो खाके, ललिता जी ने कहा। और कृष्ण खाने लगे माखन, एक मटका, दो मटका, चार मटका साफ। तो सखी कहती, बाप रे ये मल्ला है कि गिरिराज को दूसरा उतार है, सभी खा जावे को क्या? तो कृष्ण खाते हुए देखते, ए तुम ऐसा बोलोगी तो मैं नहीं खाऊंगा, तूने खाने के लिए कुछ छोड़ा कहा है, तू खाएगा सभी खाएगा। अरे देखो सुबह से शाम तक नाव चलावे है तो भूख तो लागे है कि नहीं, माना को तो खानो पड़तो है, तुम देख नहीं पाती तो नहीं खाते, नहीं नहीं खा लो लेकिन जल्दी चलो। ठीक है खा लिया, खाने के बाद कहते खा लिया ना अब चलो, बोले अब खा लिया अब हमारो सोने को जी चावे है। बाप रे ये क्या मुसीबत कर रहा है, अभी क्या करे? बोले एक सखी तकियो बनो, एक सखी चरण दाबो, बाकी जो बची है वो नाव ठेओ, तुम ही चलाओ। बाप रे ललिता जी सर पीट रही कि ये कहां मिल गया हमको, एक ही मिला होगा, यही मिला, वो समझ नहीं रहे कि हमारे प्रियतम वो अब बिल्कुल अपने को छुपाए हुए कृष्ण। और अभी नाव चलाने के लिए, अरे तुम बहानेबाजी मत बताओ, हम नहीं चलाए कभी हमारे जीवन में, और हमको देरी हो रहा है, तुमने खाना खा लिया ना, हम तुमको गाना सुना जगा दे रहे कि तुम कैसे ही चलो। अरे क्या भाड़ा मिला है, आराम भी नहीं करने देते, खाकर धंधे पर लगाते, चलो हमारा नसीब। ऐसे कह के जैसे ही थोड़ी नाव आगे बढ़ाई, कृष्ण ने कहा वजन भारी है गयो, बोझो बढ़ी गयो से, क्या करे, ये तुम्हारा गोरस सब नदिया में डाल दो, सब मटके डाल दो, अब नाव हल्की होनी चाहिए नहीं तो सब डूबोगी सब मरोगी। अरे सखी क्या करे, जिंदा रहना असली बात, डाल दो सब, डाल दिया माखन वाखन सब। और कृष्ण फिर नाव को बीच भंवर में ले गए, बोले अब भी वजन ज्यादा है, तुम्हारे वस्त्र अलंकार भी डालने पड़ेंगे। बाप रे कमाल को नाला मिलो है, लाज लुटावे को आज, सखी लाज जाए कि प्राण, अभी क्या करे, बोले जल्दी उतारो नहीं तो मैं तो तर के निकल जाऊंगा, तुम्हारो भरोसो नहीं, अब क्या करो। और कहता है कैसा मल्ला मिला है तू, और नैया खेते हुए भी राजा रानी को देख रहा, ललिता कहते तू नाव चला रहे कि हमारी सखी को देख रहा है, अरे दोनों काम कर रहा हूँ, इनको देख के नाव ऐसे ही चल रही है हमारी। राजा क्योंकि अंग इतने दोनों का मिलन हो रहा, लेकिन राजा रानी समझ नहीं रहे, उनका तो ध्यान भी इतना नहीं था, वो तो वीरा में डूबी हुए, श्याम नंदन नंदन के दर्शन नहीं किए इसलिए। और इधर ललिता जी उसको झाड़ रही है, कृष्ण कहते कि जल्दी डालो सारे वस्त्र आभूषण यमुना जी में, अगर नाव को बचाना है। अंत राजा रानी ने कहा कि डालो सखियो डालो नहीं तो मरेंगे सब, तो कम से कम जितना उतार सके उतारा, वो भी डलवाया, अब भी वजन भारी है, ले अब भी भारी है तो क्या करें, मरे। एक उपाय है मेरे पास, मेरे गुरु ने ऐसा मंत्र दियो है, जिसके कान में बोल जाऊं वो डूबेगो नहीं, यमुना में तरेगो। तो ललिता ने कहा हमारी सखी को पहले बोलो वो मंत्र कान में, जिसको बोलना है, लेकिन हमारा एक एक को बोलेंगे अभी देखो मल्ला। तो ललिता और राजारानी सुनना भी नहीं चाहती, ललिता ने फोर्स धक्का दिया, सुन लो सखी जिंदा रहना। और जैसे ही हाथ पकड़ा तो राजारानी समझ गई ये कुछ गड़बड़ है, और कान में जैसे ही कृष्ण पहुंचे उसने कहा कि मैं सारी दुनिया के नैया को खेवन मारो पर तेरो प्राण प्यारो वही हूं। ऐसा करते ही ललिता ने जैसे ही देखा तो कमर से है ना जैसे वो बंसरी कुर्तु फाड़ी बारी निकली, फटाक से थोड़ा झुक गया तो बंसरी बाहर निकली, उसी में फेंट छिट गया नीचे, अरे ये तो अपनो ही है। दादा रानी सब सखी आनंद, क्योंकि वो उसके विरह में भी मर रही थी, दुखी हो रही, बोले अब कृष्ण मिल गए, अब चाहे नैया डूबे सो तरे, हमें तो नंद नंदन के प्रेम में पहले से ही डूब गई है, अब तरे डूबन की हमको चिंता नहीं। और नंद नंदन फिर ऐसी नौका लीला मानसी गंगा में भी होती थी, यमुना जी में भी होती थी, ऐसी बहुत लीलाएं अनगिनत राधा कृष्ण की है। प्रयोजन क्या है दोनों का, एक दूसरे को प्रेम देना, सुख देना, आनंद देना, और यही लीला की अंतर्गत सेवा, यही हमारे मंजरी भाव का लक्ष्य है। लेकिन हम जैसे ही सोलह माला जप करें, चार नियमों का पालन करके, वैष्णव सेवा करके, इंद्रिय मन को शुद्ध बनाए, तभी निकुंज में प्रवेश पा सकते। क्योंकि शिव ब्रह्मा की भी एंट्री नहीं है वहाँ, केवल सखियों की, मंजू सखी बिना यही लीला विस्तार विस्तार नहीं होता। लेकिन इसलिए इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञाए पाए सेवा चरणार। तो ऐसी बहुत सारी लीला है, लेकिन समय हो गया, हमारा अभिषेक उत्सव प्रारंभ होगा और उसके बाद बड़ा ना फिर मेरे को कंप्लेन नहीं आएगा ना। ओके, तो हमारे हर्ष गोविंद प्रभु सर दयालु है, लगता है कि राधा रानी उनके हृदय में कृपा करके प्रकट करके उनके मुख से बुलवा रही है कि हमारी लीला और कहो। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि राधा रानी ने, लेकिन ये नंद नंदन ही कहते हैं कि सुनाओ सुनाओ, क्योंकि उनको उनकी प्रिया का सुनना है। आप लोग सो रहे हो लेकिन वो सुन रहे हैं, तो गिरधारी का प्लान लगता है कुछ की और सुनना। तो चलो हम और सुना देते हैं एकाध लीला और, हाँ? कि क्या ऐसे मिलन तो होता रहता था राधा कृष्ण का, लेकिन वृंदावन भौम वृंदावन का वैशिष्ट्य क्या है? भौम वृंदावन का वैशिष्ट है परकिया भाव। ओके, परकिया भावे जहां व्रजेते प्रचार, और चैतन्य चरितामृत में आया है व्रजे बिना अन्यत्र नहीं वास, परकिया रते रसिरुल्लास व्रजे बिना अन्यत्र नहीं वास। तो परकिया पर एक छोटी सी लीला और थोड़ा संदेश में दे देता हूं, जो हमारे गौड़ीय धारा का मूल है। पर मतलब देखो, गोपिया राधा रानी कृष्ण की ना स्वकिया है ना परिकिया, वही है, परकिया स्वकिया से परे है। लेकिन भगवान इस भौम वृंदावन में परकिया रस जो उत्कृष्ट माना जाता है गोलोक वृंदावन का, उसका रसास्वादन कराने के लिए उन्हीं सखियों का विवाह कराते हैं और फिर उससे प्रेम से मिलते हैं। पर की स्त्रिया है और उससे प्रेम करते हैं, और प्रेम में जो भय होता है और मिलन की तृष्णा होती है, उत्कंठा होती है, वो विरह विरह में जो रोते हैं, वो संगम से अति विरह बहुत ऊंचा माना गया है। अब इसकी संस्कृत में बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं। देखो संग में क्या होता है, उसका प्रियतम दिखता है, लेकिन विरह में पूरा पूरा सब जगह प्रियतम ही दिखता है। विरह महान माना गया है, इसको विप्रलंब कहते हैं। तो विप्रलंब और परकिया ये दोनों हमारे गौड़ीय धारा के बहुत ही सीक्रेट गुह्य और श्रेष्ठ वस्तु है। इस पर मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन लीला सुनाता हूँ। तत्व तो इन शॉर्ट यही कि भगवान ये रस आस्वादन करते हैं, और ये केवल यही होता है। गोलोक वृंदावन में कोई जटिला तकलीफ नहीं देती, वो यहाँ देती है, कुटिला यहाँ तकलीफ देती है। और देखो राधा रानी का बर्थडे हो और उसकी सासू को याद न करे, ये अच्छा नहीं है, अच्छा वो आपने टाइम दिया, नहीं तो उनको कितना बुरा लगता और हमारे राधा रानी को परेशान करती कि देखो तुम्हारे बगैर लोग मेरी तो बात ही नहीं करते, हमारा पूरा जन्म का कथा सुने मेरा कोई याद ही नहीं किया, और ननन तो रूठ जाती, मायके चली जाती कुटिला जी, तो इसलिए उनको याद करने का अवसर दिया, थैंक यू। तो एक दिन क्या हुआ, माघ का महीना था, माघ मास, तो कृष्ण सुबह जल्दी जगे, सारा दैन क्रिया खत्म, भोजन नाश्ता माता यशोदा ने दे दिया, और ग्वाल सखा को लेकर गैया को लेकर कृष्ण यमुना के तट पर आए गोचारण के लिए। ठाकुर जी ने सब लीला की, उसमें गोचारण मेन बिजनेस है, उसके अंदर ससुर मारण काल्य दमन गिरी सब उसके अंदर आता है, मेन क्या है गोचारण। हमारे कन्हैया का एक ही धंधा है, गायों को चरा हूँ, तृण चरानुगम श्री निके तनम गोपी गीत, तो यही मुख्य ब्रज में भगवान करते हैं। जैसे यहाँ पर है गोविंद गवाम इंद, गायों को आनंद देते सुख देते, इसलिए उसका नाम गोविंद। तो कृष्ण गायों को लेकर वृंदावन में गए। अब क्या हुआ कि उसने देखा कि गैया चर रही है, सखा खेल रहे हैं, उसने मधुमंगल को बुलाया। मधुमंगल भगवान का स्पेशल ब्राह्मण सखा है। मधुमंगल इधर आ जाओ, थोड़ा घूम के आते यमुना तट पर, इन लोगों को खेलने दो। मधुमंगल और कृष्ण अलग हो गए। उसी समय क्या हुआ, जावट जहां राधा रानी का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था, तो अभिमन्यु गोप की भारिया के रूप में, छुआ भी नहीं, छेड़ो है उनका, सब तत्व तो सुने हैं आप लोग। तो फिर क्या हुआ, यशोदा राधा रानी केक बनाई थी, मिठाई बनाई थी, चंदन सब सामग्री ललिता विशाखा, और बहाना क्या था, सूर्य पूजा। आप जानते राधा कुंड के पास सूर्य कुंड है, तो सूर्य पूजा के लिए सारी, लेकिन बनाई किसके लिए, अपने, लेकिन यहां क्या बताना है, पूजा की सामग्री है। और सब लेकर ललिता विशाखा आई और ये मधुमंगल और कृष्ण मिले, तब वृंदा देवी ने एक स्पेशल कुंज बनाया प्रिया प्रियतम के लिए, पुष्पों का सुंदर, और उन दोनों में इनको प्रवेश कराया। ललिता विशाखा सारी सामग्री लेकर भोग किसको लगाया, नंद नंदन को, और ललिता जी ने फिर शैया बनाया, संगीत चालू हुआ, आरती चालू हुआ, जो हम गाते ना राधा कृष्ण प्राण मोर युगल, सारी लीला घटित हुई। लेकिन जैसे राधा घर से बाहर निकली, तो ननंद कुटिला को पहले से डाउट था, वो एक ही काम करती थी, इसकी बिजनेस था कि राधा रानी का फोल्ट ढूंढू मैं, उसका दोष। तो पीछे पीछे आई और कुंज में राधा कृष्ण विहार कर रहे, तो कुंज में वो सब सखियां भी उसी में मस्त है, तो उसने देखा कुटिला ने कि दोनों शैया पे लीला कर रहे हैं, हमारी भाभी बिगड़ गई है पूरी। और ये बात किसको बतानी चाहिए? भाई को बतानी चाहिए। और मैं पहले कई बार बोली हूं लेकिन मेरा भाई मानता नहीं है प्रमाण के बिना, अब ये इनको खेलने दो, मैं जाती हूं फास्ट। और गई और जहां वो गया चरा रहा था, अभी मैंने बोला भैया भैया इधर आओ, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, चलो मैं दिखाता हूं कि तुम्हारी पत्नी क्या चीज है। और उसका हाथ पकड़ के उसने कहा कि सच बोल रही है, अगर मैं सच नहीं बोलू ना तो ये लो हाथी, जिस लाठी से गाय चरा थे ना उसको मुझे मारना, और सच बोलती हो ना तो कृष्ण को मारना। तो वो भी उग्र हो गया, कौन अभिमन्यु, चलो बहन भाई, बहन भाई बीच दोनों चले रक्षा बांध के, कि अगर कृष्ण होगा ना उधर तो कंस को बोलूंगा और लाठी से मरवाऊंगा, और राधा रानी को घर से निकलना बाहर बंद, चलो देखते हैं। लेकिन तू तो सही कह रहे ना, अरे हाँ भाई मैं देख के आई हूं। और दोनों पहुंचे, जैसे ही कुंज के पास पहुंचे तो ललिता वृंदा देवी ने देखा कि वाबा जुड़वा बस भूकंप आ रहा है उसने देख लिया, तो उसने कहा सुनो सखियो, राधा रानी तुम्हारी ननंद कुटिला अपने तुम्हारे पति भाई के साथ आ रही है। अब राधा रानी कुंज में सैया से फटाक से खड़ी हो गई, हाय राम क्या हो गया, कृष्ण कुछ भी करो बचाओ, क्योंकि वो मेरा पति नहीं है, यमराज का अवतार है, जब देखो तब मारने के लिए ढूंढता है, और वो मेरी ननंद किस भाव की दुश्मन मुझे मिली है, हमेशा मेरे पीछे चिपकी रहती है, अगर मुझे यहां देख लेना तो अब कभी मिलन होगा नहीं, मरना निश्चित है, कुछ भी करो। कृष्ण ने कहा डोंट वरी, मैंने गीता में मां सूचे सब मीरा रोड के लिए बोला है, तो तुम्हारे लिए भी है, मां में कम शरण ब्रज तो मां सूचे, मेरी शरण में हो तो चिंता, अरे चिंता क्या करे, मार खिलाओगे तुम हमको भी। बोले तुम्हारा पति है ना, मुझे पता है वो मेरा द्वेष करता है ना, लेकिन वो काली माँ को बहुत पूछता है, काली का भगत है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ऐसे भी मेरा रूप थोड़ा काला तो है ही है, थोड़ा सिंगार काली जैसा बना दो और मैं काली बन जाता हूँ, और जैसे ही वो भाई बहन आए ना, तुम जो ये सब पूजा है ना वो सब मेरी आरती गाओ, ओके चालू करो। ये कृष्ण ने प्लान दिया, और जैसे ही काली रूप धारण कर लिया, जावा फूल थे जो मंडक जैसे लग रहे थे, जीभ ऐसे बाहर निकाल के कृष्ण खड़े, कभी नहीं खड़े कलकत्ते वाली बन गए पूरा, हा? शामा काली कृष्ण बने काली, लेकिन कैसी काली, शामा काली, ऐसे ही रूप। और जैसे ही कुंडल आई कुटिला और अभिमन्यु, तो देखते हैं कि बाप रे ये तो हमारी साक्षात आद्य भगवती, दंडवत प्रणाम किया अभिमन्यु उसको भी, तो राधा रानी ऐसे टंग हाथ गिरा जैसे हो रही है, पति देव आया वो भी प्रणाम कर रहा है, कृष्ण उसी पोज में खड़े है, बोले हमारी, और जो कुटिला थी उसकी ओर देखता है अभिमन्यु, क्या बोल रही थी तू, हमारी पत्नी के विषय में बोगस बोल रही है तू, देखो कितनी सती है, और वो मेरे धर्म को फॉलो करती है, मैं काली का भगत हूँ, देखो ये भी काली की भगत है, हाँ ये तो काले की भगत है, काली की नहीं, लेकिन काला अभी काली बना है तो क्या करे, देखो कितनी सुंदर। और राधा रानी सीरियस पूजा कर रही है, ललिता भी उसके साथ खड़ी आरती गा रहे हैं, और श्याम सुंदर ऐसे ही खड़ा है इसी मुद्रा में, और अभिमन्यु दंडवत प्रणाम करते हैं, माँ मुझे माफ कर देना, माँ ऐसे ही खड़े बिल्कुल विकराल रूप में, मेरी गलती हो गई कि मैं शंका की आपके भगत पर, मेरी पत्नी आपकी इतनी शुद्ध भक्त है मुझे पता नहीं था, और कुंडलता को बोला ये लाठी तुझको दो मारने का मन करता है कि मेरी पत्नी के बाद दोष लगाती है, बदनाम करती है, चल यहां से। दोनों ने प्रणाम किया, दंडवत किया, पूजा किया, आरती किया, साथ लिया और प्रसाद खा के चले गए। जैसे ही चले गए, अभी काली फिर काला बन रहा है अभी काम करता हूं, चलो थके अभी वो सब लाओ, अभी फिर छैया चालू, फिर लीला चालू। लेकिन कुटिला आप टेंशन, मैं इन दोनों को देखी थी, वो गया कहां है, वो सर खुजला रही है, उनको पता नहीं है क्या गड़बड़ हो गया, मैं पता नहीं स्वप्न था कि क्या। लेकिन उधर से सासू जटिला कुटिला क्या की थी, उनको लेने गई, लेकिन उसको फोन करके गई थी, मैं भाई को लेके जा रही हूँ, माँ तुमने सूर्य पूजा को भेजा है ना, तो वो पहुंची सूर्य कुंड पे, राधा कुंड के पास, हमारी मध्याह्न लीला, राधा रानी 3:30 बजे 12 से 3 बजे तक राधा कुंड में लीला चलती है, और 3:30 बजे सूर्य कुंड पे आते हैं। और ये जो मैं निकुंज की लीला सुना गोविंद लीलामृत से है, ये 11:30-12 बजे की लीला, अष्टायाम लीला के काल की बात मैं कर रहा हूँ, कोई घर की बनावट नहीं, आप कहोगे प्रभु जी लग गए आप तो, बात बढ़ाने को कहा तो कहीं से ढूंढ लिया, कहीं नहीं ढूंढा, तो क्या हुआ, वो झटीला पहुंची सूर्य कुंड पे, उधर राधा नहीं है क्योंकि राधा तो यहां थी। तो जैसे झटीला वहां पहुंची तो वृंदा देवी की एक सारिका कुंज में आई, राधा राधा मृदुस्वर में, तुम्हारी सासू उधर, ननन से पीछा छोड़ा तो सासू टपकी है उधर, जटिला उधर है। तो राधा रानी बाप रे, ललिते जल्दी चलो। श्याम सुंदर कहते क्या हुआ, बोले कुछ भी नहीं, बाद में फोन में बात करेंगे, अभी चलो, उससे बात करने का टाइम नहीं। और राधा कृष्ण का हाथ छुड़ा के ललिता सब सामग्री जो भी हाथ में आया उठाई सूर्य कुंड पे। लेकिन उसके पहले घनिष्ठा और कुंदलता को कहा हम सामग्री उठा के आ रहे, तुम जल्दी जाओ फॉरवर्ड फास्ट। और जटिला वहां जाके देख रही कहां है राधा, तब वो लोग कुंदलता नाम की सखी और घनिष्ठा आई, अरे जटिला मैया, अरे प्रणाम, कैसे हो, ऐसे नाटक में। राधा रानी कहां, वो एकदम गुस्से में, राधा रानी कहां। उसने कहा राधा रानी वो अभी आ रही है, अभी घर से कितने बजे निकली है पूजा की सामग्री लेकर, अभी तक सूर्य कुंड में नहीं पहुंची, मतलब कहां है, तुम उसके साथ थी ना। तो उसने कहा देखो शांत हो जाओ जटिला मां, बात ऐसी है कि आज संडे है और सूर्य पूजा के लिए कोई कोई पंडा नहीं मिल रहा, क्योंकि गणपति बाबा का त्यौहार, सब पंडे बिजी है, पूरा मथुरा छान मारा, कोई पंडा के बिना पूजा होती है, देवता की पूजा के लिए ब्राह्मण चाहिए, पंडा चाहिए, कोई पंडा नहीं मिल रहा है, हम लोग पंडा ढूंढने में इतना समय हो गया, 3:30 बज गए। तो ललिता विशाखा राधा रानी एक पंडा मिला है, उसे बात कर रहे हैं, पटा रहे हैं, वो पंडा दक्षिणा कुछ मान नहीं रहा है और एक ही बचा था, बाकी तो सब गणपति में बिजी है। तो पंडे गणपति में पंडे बहुत बिजी हो जाते हैं, गणपति चल रहा है ना अभी, तो अभी क्या। तो ललिता तो ये कारण बड़ा उचिष्ट दिया, अच्छा दिया। तो जटिला को लगा हाँ बात सही है, पंडे पंडे के बिना तो पूजा नहीं होती। तब तक तो राधा रानी ललिता हाँ हाँ करती पहुंची, अरे कृष्ण सासू मां तुम्हें क्या रहे बाबा, प्रणाम 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 प्रणाम, ए पंडा कहाँ है। तो राधा रानी कहते कौन पंडा, कुंदलता कहती पंडा पंडा तुम बात करी थे वो पंडा वो। अच्छा हाँ हाँ पंडा 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 पंडा। तो ललिता जी कहती वो क्या हुआ मैया कि हम पंडे से हमारा फिक्स हो गया था, वो पूजा के लिए आ ही रहा था, लेकिन जैसे हमने उसने पूछा, गोत्र पूछता है पंडा, पूजा करते हैं ना किसकी ननन किसकी सासू क्या क्या, तो हमने जैसे कहा कि ये राधा रानी है जटिला की बहू, आपका नाम सुनते ही पंडा मना कर दिया, बोले वो उसके पास नहीं जाएंगे, वो बड़ी कंजूस मारवाड़ी है, कुछ दक्षिणा नहीं देती, डांटती रहती, आपका नाम बहुत फेमस है ब्रज में, कोई आता नहीं आपका। तो ललिता ने कहा एक पंडा बचा था वो भी आपका, एंड जैसे सुनाया ना तो मुकर गया, अभी मना कर रहा, लेकिन विशाखा उधर ही है कुछ कर रही है, आता ही होगा, अभी आएगा लगते है, बात करते। अब उधर क्या हुआ, वृंदा देवी और विशाखा ने कृष्ण से कहा कि महाराज काली से काले से काली बने और पंडा बनो, नमो ब्राह्मण देवाय, यहाँ तो हो ही हो, आपके लिए कौन बड़ी बात। तो कृष्ण को पंडा बनाया गया, नाम रखा गया विश्व शर्मा, और चेला कौन है, मधुमंगल कृष्ण शर्मा, चेला भी साथ में, और कृष्ण को पूरा नाटक पता है, और विशाखा को पंडे को लेकर, मतलब ये मधुमंगल और कृष्ण विष्णु शर्मा विश्व शर्मा को लेकर पहुंचे उधर सूर्य कुंड पे। अब क्या हुआ, जटिला जी ने देखा अरे ये आ गया, विशाखा ने वृंदा देवी ने कहा देखो चुप, कोई कुछ बोलना नहीं, ये पंडा गर्ग मुनि का शिष्य है मथुरा से, वो किसी का काम नहीं करता है, लेकिन हम उसने फुसला के लाए और आपका नाम तो जटिला जी बताया ही नहीं है, क्योंकि एक केस फेल हो गया, इसलिए अभी आप कोई कुछ बोलना मत, पूजा करवाना है। तब तो वो पंडा कहता है कृष्ण जो बना है, अरे यहां सब तो स्त्रियां ही स्त्रियां है, मैं स्त्रियों की पूजा नहीं करता, स्त्रियों का हाथ को छूता भी नहीं, उनके हाथ का प्रसाद भी नहीं करता, स्त्रियों के बीच में मैं नहीं था, मैं चलता हूं। वाह ब्रह्मचारी, अब इनका नाटक देखो। तो जटिला को अच्छा लगा कि पंडा अच्छा है, स्त्रियों से बात नहीं करता, हमारे काम का है। तब तक तो चेला बोला, चेलो से ना किटली गर्म हो वो चाह करता, मधुमंगल बोले हमारे गुरुजी किसी स्त्री का मुख भी नहीं देखते, आप लोगों ने मुंह दिखा दिया, हमारा गुरु का दिन खराब कर दिया, अभी गुरुजी को उपवास करना पड़ेगा। तो पंडा वो बात बोले के शांत रहे, उपवास नहीं करवाना, आगर ओवर क्या थे क्या डोट डायो गुरु चेला और डोट डायो थे, इतना मुंह नहीं देखना ठीक है, उपवास क्यों करा रहा है, राधा अष्टमी उपवास नहीं है, 12 बजे तक ही है, उपवास क्यों करा रहा है बिना फालतू के। ओ सॉरी सॉरी, क्या है हमारे गुरुजी दक्षिणा बक्षिणा छूते नहीं, लेकिन पंडा खाता छूता है, चेला को दे दो गुरु को अर्पण हो जाता है। तो मैं मनाता हूँ गुरुजी, गुरुजी एक काम अभी आ गए हैं तो कर देते, गर्ग मुनि को भी पता नहीं चलेगा, किसी पेपर में नहीं आएगा, आप स्त्रियों की पूजा की किसी को पता, एक कर दो लास्ट, ठीक है आप लोग इतना कहते हो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं आप लोग थोड़ा दूर बैठेगा हमसे पूजा कराते वक्त। पंडा पूरा नाटक कर रहा है, पूरा पूरा और जब राजा ने को चलो ये बंधाओ और फिर वो मंत्र बोलना और सब लगा दिया और सूर्य देव की पूजा करा दी, कराने लग गए, फिर सूर्य देव की आरती होती है, भोग लगता है, पूजा यही पंडा लोग ऐसे कराते हैं, स्मार्त ब्राह्मण विधि जिसको कहते हैं। जब भोग लगा तो फिर जटिला जी ने वो भोग लिया, बोले भगवान ने खाया फिर अधिकार किसका है, ब्राह्मण का, जिसने करा है। आप ए मैं खाता नहीं कुछ, और स्त्रियों का किसने बनाया, बोले ये तो हमारे राजा रानी ने, राजा रानी स्त्रियों का हाथ का मैं नहीं खाता, अंदर से तो मन हो रहा है पूरा खा जाओ लेकिन अभी तो पंडा बने तो नाटक तो करना पड़ेगा, बोले स्त्रियों के हाथ का मैं खाता नहीं, हमसे दूर रखो ये सारी वस्तु। तब का इतना लजटीला खुश हो रही कि अब है ना ये पंडे को मेरी बहू के लिए लाइफ टाइम बुक करना है क्योंकि अच्छा पंडा है। और कृष्ण क्या कहते हैं, मैं वस्तु नहीं लेता, मिठाई नहीं खाता, मैं तो भाव और प्रेम का भूखा हूं, जो तुम्हारी बहू ने हमको दिया है। जटिला को ऐसा सही बोल रहे कि मैं वस्तु नहीं लेता प्रेम का, और वो किसने दिया है, वो तुम्हारी राधा ने दिया, इसलिए ये सब हमको नहीं चाहिए। तो चेला बीच में से बोलता है पहुंचो तो मंगल, चेले को दे दो गुरुजी को दिया, एक ही बात ला इधर, क्योंकि वो इसलिए आया था, उनको तो सब चलता है, सब मिठाई भी चलेगा और दक्षिणा भी चले। दो सोने की मोहरा निकाली और जैसे कृष्ण जी दी, तो कृष्ण हम नहीं छूते तब तक तो मधुमंगल झपट इधर दे दो सब हो जाएगा, चलता है हम लोगों में। तो आप क्या कहते हो और आगे, तो कृष्ण ने कहा कि चलो अब पूजा खत्म हो गई, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और एक बार हो गया तब जटिला जी चरणों में प्रणाम करती, हे ब्राह्मण देवता, इतनी सुंदर पूजा और इतना सुंदर भाव और इतना स्त्रियों के प्रति अनासक्ति, मेरी एक प्रार्थना है कि मेरी बहू को आप ही पूजा कराना। हर नहीं नहीं मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं, वो तो टाइम मिल गया। तो चेला कहते हैं हाँ हमारे गुरुजी को तो अपॉइंटमेंट चार चार साल का एडवांस में करना पड़ता है, वो लोग क्या वही डर डाय मुंगा खाली बोलना है, अगर यही पूजा तो हमको लेना है, सारा पूजा कैंसिल इसके सामने, लेकिन कुछ बात जमा नहीं, वो मना करेगी तो जटिला और चाहेगी ना कि भाई, क्योंकि वो डरती थी इनकी, इनके ऊपर शक था इनको, बोले ये पंडा ब्रह्मचारी है और स्त्रियों पर इसलिए यही चलेगा। हम तो कृष्ण से प्रार्थना कर, चले तुम कहती हो तो कभी कभी पूजा करा लेंगे। तब तक तो वो लोग भी आते हैं, सूर्य कुंड में ऐसी लीलाएं होती थी, सूर्य पूजा एक बार राधा रानी कर रही थी, उसी समय अभिमन्यु आ गया, कुटिल आ गया, अभी कृष्ण खड़े, सूर्य देव की पूजा नहीं हो रही, कृष्ण के साथ विहार हो रहा, तो किसी ने कहा कि आ गया अभिमन्यु कुटिला, तो कृष्ण जैसे काली बने ऐसे सूर्य देव बन गए, वही है ना गीता में कहते हम आदित्य गतम विभूति, वही सूर्य उन्हीं में हंस गया है, बनने में क्या दिक्कत है। तो राधा रानी फिर उसकी पूजा करने लगी, तब तक तो वो फिर दंडवत कर रहा है, तो सूर्य देव कहते अरे मेरी मेरी पत्नी देखो कुटिला तुम्हारी भाभी कितनी पवित्र, सूर्य देव साक्षात प्रकट हो गए इधर। तो सूर्यदेव कहते हाँ मैं साक्षात प्रकट हूं तुम्हारी इस पत्नी के पूजा से, ऐसे बोल रहे उसी पोज़ में। तो कहते हैं कि मांगो क्या चाहते हो, सूर्यदेव कृपा करो, तुम पर कृपा नहीं करूंगा, जैसे मैं तेज गर्मी देता हूं तुम्हारे पूरे कुल को मार दूंगा, तुमको पहले ही मार दूंगा। अरे बाप रे मैंने क्या किया, तुम तुम्हारे पत्नी पर बहुत शक करते हो, वो मेरी प्रेम भक्ता है, हर रोज मेरी पूजा करने आती है और तुम उसके ऊपर शक करते हो, और ये कुटिला ये तो नरक में जाएगी सीधा, इसका कभी शादी नहीं होने दूंगा। अरे महाराज हमको समा कर दे, ऐसे नहीं तो कभी इसका पीछा करेगी, बोले कभी नहीं करेगी, नहीं करेगी, कभी इस पर शक करेगी कभी नहीं, तो तुम्हारा धन धंधार धन भंडार बढ़ता रहेगा, जाओ तुम लोग यहां से डिस्टर्ब मत करो। दोनों अरे थैंक यू करके चले गए, फिर लीला चालू। इन लोगों का काम ही है ऐसे ही बना, लेकिन भगवान क्या करते हैं, क्योंकि राधा रानी अन्य को स्वीकार, लेकिन राधा रानी के छाया को विष्णु भी नहीं छू सकते, अभिमय क्या है, तत्व को हमें समझना है। लेकिन भगवान इस रस का आस्वादन करना चाहते हैं, और इसके रस की पुष्टि यही राधा रानी चाहे मान करे, क्रोध करे, प्रेम करे, ये सब प्रेम समुद्र की तरंग है, आपने चैतन्य चरितमृत में आया मान प्रणय भाव, ये सब प्रेम का ही विकार है, लेकिन कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे इसकी बात को सीधा और स्पष्ट और पूर्ण रूप से कोई जानती है तो कौन जानती है, राधा रानी। इसलिए वो क्रोध करे भी खुश करती है, मान करके भी खुश करती है, प्रणाम करके भी खुश करती है, सेवा देकर भी खुश करती है, सेवा लेकर भी, एक ही काम है, मत प्राण नाथस्तु सएव नापरः। चैतन्य महाप्रभु ने राधा भाव में कहा कृष्ण मेरा आलिंगन करे चाहे मुझे ठोकर ना, वो कुछ भी करे लेकिन मेरे प्राणनाथ यही है और कोई नहीं, ये भाव की पराकाष्ठा दिखानी थी चैतन्य राधा रानी। और इस तरह मिलने में, छुप छुप के मिलने में आनंद है, प्रेम व्यतिरेक है, तृष्णा है, और इस रस का भगवान भौम वृंदावन, यहाँ भूमि के वृंदावन में आनंद लेते हैं, वहां गोलोक वृंदावन में कोई इस तरह रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये रस की पुष्टि यहाँ होती है। तो ये रस और ये केवल वृंदावन में है, परकिया भावे व्रजेते विलास, और कहीं ये नहीं है। तो इस तरह कृष्ण की बहुत बहुत मधुर मधुर लीलाएं हैं। लेकिन आज राधा रानी का मंगलमय प्रागट्य दिन है और कृष्ण जैसे मैंने कहा अपने बर्थडे से भी आज बहुत खुश है, तो आज हमें राधा गिरधारी के चरणों में प्रार्थना करनी है, विशेषकर राधा रानी के चरणों में, कि हमें वो कृष्ण भक्ति में शक्ति दे, हाँ शुद्ध मति दे, और बिना स्वार्थ कपट के निष्ठापूर्वक गुरु शास्त्र निर्देश आज्ञा में हम गिरधारी की सेवा में लगे रहे। क्योंकि राधा रानी क्या करती है, माधुर्य रस की पराकाष्ठा है, लेकिन करती क्या है, सेवा है ना। तो हमारा काम क्या है, हम कृष्ण के दास है और उनके सेवक है, लेकिन माया के कारण भूल गए। इसलिए प्रभुपाद जी वहां पर लिखते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय का 13वां श्लोक, जिसमें वो कहते हैं देवीम प्रकृति मास्तिकम महात्मानस्तु माम देवीम प्रकृति। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं देवी शक्ति मतलब राधा रानी, और राधा रानी के आश्रय में रहना मतलब उस अतरंगा माया माया विकार को छोड़कर रजस तमस को गुरु शास्त्र निर्देश में राधा रानी के आश्रय में रहकर व्रज भाव में दास दासानु दास भाव में कृष्ण की सेवा करना, ये हमारा स्वरूप। और यह जो साधना करेंगे वही सेव्य को हम साध्य को पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने इस कान के माध्यम से गीता भागवत चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत जैसे शुद्ध ग्रंथों से हमें शुद्ध प्रेम की वो भजन स्थली भजन परिपाटी बताई, जिसमें साधना है, नियम है, यम है, और फिर राग अनुराग और प्रेम के तक हम पहुँच जाते हैं। तो आप भक्तों से हम निवेदन करते हैं आज के पवित्र अवसर पर, सबसे पहले तो दास हमको आशीर्वाद दीजिए, कुछ गलती त्रुटि राधा रानी तत्व लीला जन्म कुछ बताया जो स्मरण में आया, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करिए, सुधार कर ग्रहण करिए। और सार यह है कि आशीर्वाद दीजिए कि हम भी प्रभुपाद के मिशन इस्कॉन में गिरधारी के कृष्ण की सेवा में लगे रहें। और आप भक्तों से भी हम निवेदन करते हैं राधा रानी के चरणों में एक ही कामना करिए कि हमें कृष्ण भक्ति में शक्ति दो, शुद्ध मति दो, ताकि हम गिरधारी की सेवा में जब तक सांस चले लगे रहे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। थैंक यू वेरी मच राधा रानी की।